आइए अब हम अपने सिरों को प्रार्थना के लिए झुकाएं।
Gracious Heavenly Father, the Almighty,
अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने यीशु मसीह को मरुओं में से फिर जिलाया और उसे हमारे सामने इन अंत के दिनों में प्रस्तुत किया, पवित्र आत्मा के सामर्थ में हम अनंत परमेश्वर की इन सामर्थ भरी मुलाकातों के लिए धन्यवादित हैं। और अब पिता, हम दूसरी घड़ी का सामना कर रहे हैं, एक समय जो कि बहुत से लोगों के अनंत गंतव्य को बदल सकता है। और प्रभु, इस पहुंच करने के लिए हम लोग अयोग्य हैं, क्योंकि ये वचनों में है कि मेमने ने पुस्तक को लिया और मोहरों को खोल दिया। ओ परमेश्वर के मेमने, हम प्रार्थना करते हैं कि आप आगे आए। प्रभु, हम आपको पुकारते हैं, महान छुड़ाने वाले, आगे आकर हमें अपने छुटकारे की योजना को दिखाए, जो कि वर्षों से छिपी हुई थी। इस पांचवी मोहर को आज रात्रि हमारे लिए तोड़ते हुए पिता, और दिखाते हुए कि मोहर के नीचे हमारे लिए क्या है, ताकि हम एक अच्छे मसीही होकर जाएं, जो हम अब हैं, उस कार्य के लिए उपयुक्त हो सकें जो आगे रखा है। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं। शुभ संध्या मित्रों, मैं समझता हूँ आज रात्रि यहाँ होना शानदार सौभाग्य की बात है। आज रात्रि इस महान घटना पर मैं नहीं जानता कि मुझे कहीं और अच्छा लग सकेगा, बजाय कि मैं राजा के कार्य पर रहूँ। और अब विशेषकर इन पाठों पर आते हुए, जहाँ के हम बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि वो मुझ पर प्रकट नहीं करेगा तो मैं आपको नहीं दे सकता। मैं अपने कोई विचार उपयोग करने का यत्न नहीं करता या कुछ भी, ठीक जैसा वो इसे मुझे देगा, ये ठीक बात है। और मैं निश्चित हूँ, यदि मैं अपने विचारों का उपयोग नहीं करता हूँ और ये मार्ग के बीच में आते हैं जो हैं, और सारे जीवन भर ये कभी गलत नहीं हुआ, ये इस बार भी गलत नहीं होगा। अब हम बस शानदार और बहुत बहुत धन्यवादित हैं कि जो उसने हमारे लिए किया, जीवित परमेश्वर का महान भेद भरा हाथ, ये कितनी महान बात हो सकती है। हम और कितने सौभाग्यशाली लोग हो सकते थे इससे कि हमारी उपस्थिति राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने हो। हम संभवतः सीटी बजाएंगे और झंडे ऊंचे करेंगे और कालीन बिछाएं और सब चीजें देश के राष्ट्रपति के लिए कि नगर में आता है, परंतु जरा सोचिए कि ये सही होगा और ये नगर के लिए सम्मान होगा। परंतु सोचिए, आज रात्रि हमारे छोटे नम्र आराधनालय में हम राजाओं के राजा को निमंत्रण दे रहे हैं, परमेश्वर को, और हम नहीं, वो नहीं चाहता कि कालीन बिछाई जाए और आदि आदि, वो चाहता है कि नम्र हृदय सामने रखे जाएं, ताकि वो इन नम्र हृदयों को ले सके और उन पर अच्छी चीजें प्रकट करे, वो अच्छी बातें जो उसके पास भंडार में उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं। अब हम पूछते हैं, और मेरे पास एक गवाही है जो कि मैं देना चाहूंगा। अब यदि मैं इसमें गलती करूं, मैंने अभी अभी ये सुना, हो सकता है मैं गलत हूं, परंतु मैं सोचता हूं लोग यहां पर हैं और जिन पर ये गवाही लागू होती है। और फिर कुछ दिनों पहले जब मैं अपने घर एरिजोना में था, हमें एक टेलीफोन आया जिसमें कहा गया कि एक छोटा लड़का था जिसे गठिया वाला बुखार था जो हृदय पर जाता है, और वो ऐसा था। उसके पिता और माता ऐसे प्रिय मूल्यवान मेरे मित्र थे। वो हमारा एक डीकन था यहाँ पर कलीसिया का, भाई कॉलिंस। उसका छोटा लड़का, छोटा मिकी जॉय का साथी, जो हृदय के गठिया बुखार से पीड़ित था, और डॉक्टर ने उसे घर भेज दिया था और उसे चारपाई पर डाल दिया और माता पिता को बता दिया कि उसे उठने भी ना देना, न ही सर उठाने देना कि पानी पिए, नलकी से पिए। उसकी हालत इतनी खराब थी। और ईमानदार माता पिता यहाँ आराधनालय में आए और विश्वास करते हैं, और कुछ रात्रियों पहले प्रतीक्षा का यत्न नहीं किया। हमने रविवार में चंगाई सभा घोषित की, परंतु ये देखते हुए कि प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं, इसलिए हमें चंगाई सभा को हटाना पड़ा। और तब मेरे पास कुछ छोटा सा था जो मैंने अपने अंदर रख रखा था अपने हृदय में, और माँ और पिता जानना चाहते थे यदि वे बालक को कमरे में ला सकें, और वे उस छोटे को वहाँ ले आए और पवित्र आत्मा ने उसके चंगा होने की घोषणा कर दी। और इसलिए माता पिता इसके लिए आदरयुक्त होते हुए उस बालक को घर ले गए और उसे विद्यालय भेज दिया। बस उसे विद्यालय भेज दिया, डॉक्टर ने इस बात को पकड़ लिया, इसलिए डॉक्टर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था ऐसी बात से। इसलिए उसने माँ को बताया कि निसंदेह बालक को पलंग पर ही होना चाहिए, और उसने उसे सारी कहानी बताई। और मैं सोचता हूँ कि वो पुरुष एक विश्वासी है, एक नामधारी के द्वारा एक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट डॉक्टर, और इसलिए उसने कहा भाई आपको चाहिए, ये समय है कि मैं बालक की जांच करूं। कहा कि आपको चाहिए कम से कम इसकी जांच करवा लें। वो बोली बहुत अच्छा। बालक को लिया और डॉक्टर ने उसकी जांच की, उसके खून की, जहां वो गठिया बुखार होता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि डॉक्टर इतना अचंभित था कि उसे नहीं मालूम कि क्या करे। वो छोटा लड़का इतना सही सामान्य था, बढ़िया और चंगा, ना एक भी पाया गया। अब क्या कॉलिंस यहाँ पर हैं? हो सकता है मैंने गलत बताया हो, मैं चाहता हूँ क्या ये ठीक बात है बहन कॉलिंस? जी हाँ ठीक है। हाँ ये छोटा मिकी कॉलिंस लगभग 6-7 वर्ष का है, और ये लगभग 3 रात्रि पहले कमरे में हुआ। ओह वे, मनुष्य को छोड़ उस कमरे में किसी को होना चाहिए। ये महान सामर्थी यहोवा था, ये ठीक बात है, जो अपने वचन को सम्मान देने को आता है। और मैं इसे सुनकर बहुत आभारी हूँ, समझे? मैं जानता हूँ कि हम सब, केवल मैं ही नहीं परंतु सारे, क्योंकि क्या हो यदि वो आपका छोटा लड़का या मेरा छोटा लड़का होता। और याद रखें, मैं गवाही दे रहा हूँ बस जैसे कि एक और एक यहाँ से और एक वहाँ से, ये सब जगह हो रहा है, परंतु केवल आपकी जानकारी के लिए कि मेरी वास्तविक सेवकाई दिव्य चंगाई पर है। परंतु आप, मैं यहाँ इन मोहरों के लिए हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप समझेंगे क्यों मुझे ये करना था। और इसलिए मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं धर्म विज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो बस बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। और अब इसमें कि बीती रात्रि हमने छोटी लड़की की गवाही दी, मेरे पास उसका नाम है, बिली के पास, अब यहाँ पर है कहीं अभिभावकों का, और वे कौन है, और ये छोटी लड़की लहू के कैंसर से अंतिम स्थिति में थी, बस लगभग इतनी खराब कि वे उसे मुंह से नहीं खिला सक रहे थे, उसे होना ही था, नसों से उसे खून चढ़ाया जा रहा था। और वो प्यारी छोटी सी चीज थी, वो अपनी आयु से छोटी थी, लगभग इसी प्रकार की ये छोटी महिला यहाँ पर है मैं समझता हूँ, परंतु वो लगभग इतनी ऊंची थी, बहुत ही, वे लगभग हमारे ही जैसे थे। आप बालक के कपड़ों से बता सकते हैं कि माँ बाप कि वे बहुत ही गरीब थे, बहुत ही निर्धन और इस प्रकार, परंतु वास्तव में श्रद्धा से भरे, और पवित्र आत्मा ने बालक की चंगाई घोषित कर दी। अब जरा इस पर सोचें, ल्यूकेमिया के साथ वो छोटी सी और लहू इतना खराब कि वे उसे मुंह से और नहीं खिला सकते थे, इसे तो अस्पताल ही लेकर जाना था और खून लेना था या नसों के द्वारा चढ़वाना, इसे खिलाना, मैं समझता हूँ ग्लूकोज या ये जो कुछ भी हो, मैं नहीं जानता कि चिकित्सा शब्दावली में इस बीमारी के लिए क्या है, परंतु जो भी है इसे इसी प्रकार खिलाना था। इसके पहले बालक स्थान छोड़े हम्बर्गर के लिए रो रहा था। और अभिभावक ये सुनने के बाद कि पवित्र आत्मा ने यहोवा यूं कहता है, देखिए वे, और वे अपरिचित, पहले कभी भी आसपास नहीं थे, परंतु वे एक पुराना जोड़ा जिन्होंने अभी अभी अपने बैठने का स्थान कुछ मिनटों पहले पाया। भाई और बहन किड ने उन्हें निर्देश दिए कि क्या करना है और क्या सुनना है, और बालक अपने घर के मार्ग पर खाना खाता है, विद्यालय में 2 या 3 दिन के बाद और डॉक्टर के पास गए होंगे और डॉक्टर इतना आश्चर्यचकित था, उसने कहा कि बालक में ल्यूकेमिया का एक लक्षण तक नहीं मिला। समझे, अब ये तुरंत ही निशाने पर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ की लहू की धारा को लेकर शुद्ध कर दिया ठीक इस प्रकार से, और नए जीवन का संचार वहाँ वापस आ गया, क्योंकि आपका रक्त प्रवाह आपका जीवन है मरणहार। और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुराने वाले को साफ कर दिया। और ये क्या है? ये पूर्ण रूप से, मैं ये कहूँगा, ये सामर्थी परमेश्वर का सृष्टि वाला व्यवहार है। उस रक्त प्रवाह को लेना जो कैंसर से दूषित है, जब तक कि वो छोटा सा जन पीला और सूजा हुआ, और कुछ ही क्षणों के अंदर एक बिल्कुल नया रक्त संचार। मैं विश्वास करता हूँ, मैं ये उसके नाम में नहीं बोलने जा रहा हूँ, मैं ये अपने नाम में बोलने जा रहा हूँ। अपने विश्वास के प्रकाशन में सबीनो कैनियन में क्या हुआ उस दिन, मैं विश्वास करता हूँ कि घड़ी आ रही है जब कटे हुए हाथ वापस आ जाएंगे और सृष्टिकर्ता की महिमा वाली सामर्थ। मैं विश्वास करता हूँ, यदि एक गिलहरी को मैं प्रकट कर सकता हूँ जिसका कि कोई नहीं, यह पुरुष या महिला को अपना खोया हुआ अंग मिला, और ये पूरा जानवर अपने आप में वो परमेश्वर है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। ठीक है, अब मैंने उन विषयों को आरंभ कर दिया है और हम बातें करते जा रहे हैं, और लोग जो दीवार के साथ साथ इस बड़े हॉल में खड़े हैं और कमरे और आदि आदि में, इसलिए मैं सीधा सीधा संदेश को लूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि सर्वव्यापी है, और ये कि आज पांचवी मोहर के विषय में एक भी बात नहीं जानता। ये उसी प्रकार भेद भरी विधि के साथ आया इस प्रातः दिन निकलने के लगभग एक घंटा पहले, जब मैं प्रार्थना में था, और आज मैं पिछले पांच या छह दिनों से बैठा हूँ एक छोटे से कमरे में, किसी से नहीं मिलता, बस बाहर जाकर अपना खाना खाता हूँ मित्र के साथ, यहाँ अपने मित्रों के संग। और सही में आप जानते हैं वो मित्र कौन है, ये भाई और बहन वुड हैं। जी हाँ, और आप जानते हैं कि मैं वहाँ गया और उनके साथ रहा, और हर कोई अच्छा था, और वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, बस साधारण। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन मोहरों के संदेश के साथ बना रहूँ, ये महत्वपूर्ण है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये घड़ी इसका प्रकटीकरण का समय है, इसके प्रकाशन का। और अब मैं चाहता हूँ कि आप निश्चित हो जाए जल्दी ही, जितना जल्दी आप हो सकते हैं, अपनी अनजानी समझ को जो इन सात मोहरों की है लिखें, यदि ये आपके पास है, और इन्हें मंच पर रख दें। हो सकता है कि भाई नेविल या कोई यहाँ संदूक रख सकता है। ओ यहाँ यहाँ, अब मैं उन्हें देखता हूँ, ये अच्छा है, बल्कि आज रात्रि ये होते ताकि मैं उन पर थोड़ा सा अध्ययन कर सकता था रविवार प्रातः के लिए। अब इस समय नहीं, ठीक इस समय इसके लिए निवेदन ना करें ये कहने को, क्या ये पवित्र आत्मा का प्रमाण है? मैं इस विषय में जानना चाहता हूँ जो कुछ इस विषय में सिखाया है। आप देखिए, इसलिए हम इसे एक विषय में ले सकते हैं कलीसिया युगों के समान, सीधा सीधा देखिए, क्योंकि यही जिससे अब हम व्यवहार कर रहे हैं। अब जैसा कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे थे, तब ये हो सकता है ले एक भिन्न प्रार्थना, और आप अभिषिक्त हैं और भिन्न प्रकार की चीज के लिए आए हैं। आप जानते हैं, आप परमेश्वर को खोज रहे हैं कि मालूम करें क्या आज रात्रि कोई वहाँ पर होगा प्रभु। जी हाँ, ये कोई पीले कपड़े पहने है, वहाँ सीधे हाथ पर कोने में बैठा है। जब आप उसे बुलाते हैं और उससे ये कहकर बुलाएं और कहें ऐसा ऐसा उसने किया है और उसके पास अमुक अमुक है, तब वहाँ जाकर आप ध्यान देते हैं और वो वहाँ है, समझे? आप वहीं पर हैं, देखिए ये भिन्न है, समझे? और मैं इस प्रकार प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु यीशु इसका क्या अनुवाद है, इसे मुझ पर प्रकट करें, आमीन। अब आइए हम अपनी अपनी तलवारें फिर से निकाल लें, और वो वचन, और मैं भाई नेविल के आत्मिक समर्थन की सराहना करता हूँ और उसके भाईचारे के प्रेम को, यहाँ मेरे पीछे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आप सब लोग भी वहाँ पर हैं। और अब आज शुक्रवार रात्रि होने के नाते हम लोग यत्न करेंगे, हम इसको इस प्रकार बनाते हैं, हम आप संभवतः सारी बातों को नहीं ले सकते आप, क्योंकि आप ये ले सकते थे उन मोहरों में से एक को और टिकते इसे वचन में होते हुए निकलते, समझे, ये महीने महीने और लेगा और फिर आप इसे नहीं पाएंगे, क्योंकि मोहर अपने में सारे वचन को समेटे हुए है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, इसकी एक मोहर। इसलिए मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, इसके लिए मार्ग से ना हटते हुए मैंने वचन लिखे हुए हैं या छोटी छोटी टिप्पणियाँ यहीं कहीं और बचा रहूँ और उसी एक चीज पर बना रहूं। मुझे पीछे भी ध्यान रखना है क्योंकि मैं केवल बोल रहा हूं, मैं मार्ग से होते हुए बोलता हूं, मैं आशा करता हूं ये सही प्रेरणा है। और तब जब मैंने देखने के लिए लिया और मैं बोलना आरंभ करता हूं और मैं अपने में अनुभव करता हूं कि मैं विषय से हट रहा हूं, मैं पलटूंगा, पीछे दूसरी ओर से देखूंगा कि दूसरा वचन लेने का यत्न करूं कि उस पर आ जाऊं। अब देखिए इसे एक और हल्का करने के लिए बजाय इसके कि उस पर आगे बढ़ने का यत्न करूं। और इसलिए अब हम आज रात्रि अध्ययन करने जा रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा, वो पांचवी मोहर, और ये छोटी वाली है, ये दूसरों से थोड़ी लंबी है, चार घुड़सवार अब दो दो पदों में अलग अलग, और ये तीन पद इस एक में। अब पांचवी मोहर आरंभ होती है प्रकाशित वाक्य का छठवां अध्याय नवा पद। और अब यदि आप यहाँ एक अपरिचित हैं जिसने इन चार घुड़सवारों को नहीं सुना है, भाई आप देखिए कभी कभी आप बस आते ही नहीं हैं और एक प्रकार से किसी चीज में जड़ जाते हैं, और जब आप करते हैं तो आप लोगों से आशा करते हैं कि इसे समझें। इसलिए कोई छोटी सी चीज, कुछ जो आप नहीं समझते, ठीक है, इसे थोड़ा सा सहन कर लें या टेप ले लें और इसे सुन ले और मैं निश्चित हूँ आपको इससे आशीष मिलेगी। मेरे पास मैं आशा करता हूँ कि आप जो ये करते हैं। अब हर कोई नवे पद से अब ग्यारहवें पद तक या ग्यारहवें पद को मिलाकर, जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। अब बल्कि ये भेद भरा है, और अब टेपों और पुरोहित वर्ग और शिक्षकों के कारण जो यहाँ पर उपस्थित बैठे हैं, अब यदि आपका विचार इससे भिन्न हो, मेरे भी थे, परंतु मैं बस इसे प्रेरणा से ले रहा हूँ जिसने मेरा सारा दृष्टिकोण इसके लिए बदल दिया है, समझे। और तब मुझे मालूम पड़ा, जैसे कि आप इस प्रकट हुए को देखते हैं, ये ठीक पीछे से मिला हुआ है और इन कलीसियाई युगों को लाता है और वचनों को साथ मिलाता है और बांधता है, समझे। और यही कारण है कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से आता है। अब हम ये अनुभव करते हैं, और कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम उस पर निर्भर करते हैं कि किस महान शिक्षक ने क्या कहा है इस विषय में, समझे। और ये ठीक बात है, मैं शिक्षकों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ किसी भी प्रकार से नहीं, और मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, मैं पाप को दोषी ठहराता हूँ, अविश्वास किसी को नहीं। और कुछ लोगों ने कहा, आप संस्था को दोषी ठहराते हैं। नहीं, मैं नहीं ठहराता, मैं संस्था के तंत्र को दोषी ठहराता हूँ, ना कि लोगों को जो वहाँ पर हैं, उन लोगों का झुंड जो संस्था बनाते हैं, आपको मालूम है, परंतु वो तंत्र जिसके द्वारा वे चलाए जाते हैं, यही जिसे मैं दोषी ठहराता हूँ। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक से ही हैं। मैं कुछ अच्छे मित्र जिनको मैं जानता हूँ कैथोलिक हैं, बस। क्या आप अनुभव करते हैं? और हो सकता है मनुष्य आज रात्रि यहाँ पर बैठा हो, संभव है। केवल एक ही मार्ग था कि हमने ये आराधनालय बनाया, क्योंकि एक रोमन कैथोलिक कोर्ट में अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मेरे लिए आगे बढ़ा, और लड़के, कोई ऐसा नहीं करेगा, ये ठीक बात है, और वे इसे निरस्त नहीं कर सके, ये ठीक बात है। और कहा उन्होंने चिन्हित किया बहुत सारे लोगों को। उसने कहा ओ उस कलीसिया में 80 और नहीं बनाएगा, इस प्रकार से कहा। वो आराधनालय वहाँ खड़ा है, कहा मैं पास्टर को जानता हूँ और सब इस प्रकार से। और कहा वो आराधनालय वहाँ पर था, कहा आप बाकी उसमें जोड़ सकते हैं, तो फिर वे क्यों नहीं सकते। एक रोमन कैथोलिक मेरा एक अच्छा मित्र, समझे? जी हाँ श्रीमान। एक लड़का जो कैथोलिक है, मेरा एक शानदार मित्र मुझसे बातें कर रहा था। उसकी एक लोहे की औजारों की दुकान थी। इसके पहले कि मैं छोड़ता, उसने कहा बिली मैं जानता हूँ कि तुम हमारे धर्म के तंत्र में विश्वास नहीं करते हो। उसने कहा परंतु मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बोला परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को हमारे लिए इतना सम्मानित किया, मैं विश्वास करता हूँ कि यदि तुम राष्ट्र में कहीं भी संकट में फंस जाओ तो बोला राष्ट्र का हर कैथोलिक आपके पास आएगा। आप देखिए ये, उसने कहा हर एक पीठ पर क्रूस धारण करने वाला, उसने ऐसा कहा। मैं आपको वैसा ही बताने जा रहा हूँ जैसा उसने कहा। निसंदेह वे ये होने का दावा करते हैं क्योंकि आरंभिक मसीह अपनी अपनी पीठ पर क्रॉस रखा करते थे। हम ये इतिहास के द्वारा जानते हैं और वे प्रारंभिक मसीही होने का दावा करते हैं जो कि वे थे, परंतु उस तंत्र व्यवस्था ने उन्हें मार्ग से हटा दिया। आप देखिए और वे लोग एक कैथोलिक या यहूदी या ये जो कुछ भी है, वे लोग मनुष्य हैं, उसी वृक्ष से आए हैं जिससे हम आए हैं, समझे? ये ठीक बात है। वे लोग जो प्रेम करते हैं, खाते पीते और सोते और ठीक वैसे ही जैसे और कोई हो, इसलिए हमें किसी को व्यक्तिगत दोषी नहीं ठहराना चाहिए। नहीं, कोई नहीं। देखिए, परंतु हमें किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, परंतु एक सेवक के समान मुझे उस सर पर वहाँ प्रहार करना है जो उन लोगों में होकर काट रहा है। आप देखिए, मैं नहीं करता और मैं यहाँ तक कि नहीं, बस मैं स्वयं में ऐसा कभी नहीं करूँगा यदि मुझे परमेश्वर की ओर से अधिकार नहीं होता कि इसे करने के लिए मैं कर्तव्य से बंधा हूँ। देखिए, और मुझे इसे सच्चाई से और ईमानदारी से पकड़े रहना है। परंतु यदि एक कैथोलिक यहूदी वो जो भी था यहाँ आया, यदि वो मुसलमान यूनानी या ऑर्थोडॉक्स या वो जो भी हो सकता है, यदि वो यहाँ प्रार्थना करवाने के लिए आता है, तो मैं उसके लिए उतनी ही ईमानदारी से प्रार्थना करूँगा जितना मैं अपने लोगों के लिए करूँगा। ये ठीक बात है निश्चय ही, क्योंकि वो एक मनुष्य है। और मैंने बुद्धिस्टों के लिए, सिखों, जैनों, मुसलमानों के लिए प्रार्थनाएं की, और आप देखिए हर प्रकार से इस तरह, और मैं उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछता हूँ, मैं बस उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वे कोई हैं, एक मनुष्य जो चंगा होना चाहता है और जीवन को थोड़ा सरल बनाना चाहता है अपने लिए कि जीवन के चलते। अब इसमें हम ये अनुभव करते हैं, और मैं जानता हूँ आपसे बहुत से यहाँ पर हैं, यहाँ पर दो या तीन वास्तविक ज्ञानी बैठे हुए हैं और वे बुद्धिमान, और उन्होंने दूसरों की शिक्षाएं पढ़ी हुई हैं इस विषय पर। और मैं चाहता हूं कि ये भाई ये जानकर कि मैं इन लोगों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं केवल वही प्रकट कर रहा हूं जो प्रभु मुझे दिखाता है, और बस मेरे पास यही है। और हम कभी भी ये नहीं सोचना चाहते क्योंकि कोई छोटी धोने मांजने वाली या छोटा हल चलाने वाला परमेश्वर से प्रकाशन नहीं पा सकता, क्योंकि आप देखिए ये परमेश्वर वास्तव में वो अपने आप को सादगी में प्रकट करता है। यही उस रविवार को हमने लिया था कि इसे आरंभ करें कि कैसे वो अपने आप को अपनी सादगी में प्रकट करता है, यही जो उसे महान बना देता है। अब मुझे जरा इसकी एक मिनट के लिए समीक्षा करूं। परमेश्वर को क्या महान बनाता है? क्योंकि वो अपने आप को बहुत साधारण बनाता है, यही उसको महान बनाता है। परमेश्वर महान है और अपने आप को ऐसे साधारण रूप में ले आ सकता है कि इस संसार का बुद्धिमान उसे नहीं ढूंढ सकता, वे उसे नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही साधारण बना लेता है। अब ध्यान दें, और ये अपने आप में यीशु मसीह के प्रकाशन का भेद है, समझे? ये अपने आप में ये वहाँ परमेश्वर से कुछ भी महान नहीं हो सकता। आप किसी चीज को इतना साधारण नहीं बना सकते जैसे वो अपने आप को बना लेता है। देखिए, यही उसको महान बनाता है, समझे? अब एक महान व्यक्ति वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, या हो सकता है वो अपने आप को नीचा कर सकता है और कहे आप कैसे हैं, आपसे कहे देखिए, या कुछ इस प्रकार से, परंतु वो अपने आप को छोटा नहीं कर सकता। वहाँ उसके विषय में कुछ है वो एक मनुष्य है, वो अपने आप को छोटा नहीं बना सकता, क्योंकि जब वो अपने आप को बहुत छोटा बनाता है तब पहली बात आप जानते हैं उसे किसी के संदर्भ को लेना पड़ता है जो कि किसी ने किया, और इस प्रकार और फिर वो अपने आप को फिर से वापस खींचने लगता है। आप देखिए, परंतु ऊपर का मार्ग नीचे की ओर है, परमेश्वर में। जी हाँ, संसार के बुद्धिमान अपनी बुद्धिमानी में उसे ढूंढने का यत्न कर रहे हैं, ऐसा करने में वे उससे अलग हो जाते हैं। देखिए, संसार के बुद्धिमान, यदि आप किसी चीज की व्याख्या गणित या किसी चीज के द्वारा करने जा रहे हैं, स्मरण रखें, उसने ये बाइबल में रख रखा है, प्रकाशन में नहीं, मुझे क्षमा करें, यशाया 35 में, मैं विश्वास करता हूँ यही है। यहाँ तक कि ये ऐसा है, ये इतना साधारण है कि यहाँ तक कि एक अपराधी व्यक्ति इसे समझेगा, समझे, ओ यहाँ तक कि मूर्ख भी इसमें गलती नहीं करेगा। बुद्धिमान अपनी बुद्धि के द्वारा दूर से ही चूक जाते हैं, उससे दूर जा रहे हैं, उसको अपनी बुद्धि से ढूंढने के यत्न करने के द्वारा। अब ये ना भूलें, ये टेप हो जाएगा। देखिए, बुद्धिमान अपनी बुद्धि के द्वारा उसे ढूंढने का यत्न में दूर चले जाते हैं, वे उससे चूक जाते हैं। देखिए, यदि वे पर्याप्त बड़े हो सकते कि पर्याप्त साधारण हो जाएं, वे उसे पा सकते थे। यदि आप इतने बड़े हो सकें कि पर्याप्त साधारण हो जाएं, समझे इसे, और आप जानते हैं कि ये वास्तव में सत्य है। मैं लोगों में गया, उनके दफ्तरों में गया और आदि आदि, वे वास्तव में मनुष्य थे, बड़े राजा, देखिए, और अधिपति, राजा, और अधिकांश वे बड़े लोग हैं। तब मैं ऐसे स्थानों में गया हूँ जहाँ लोग कपड़े बदलते हैं, हो सकता है कुछ सेवक जो थोड़ी देर के लिए मुझसे विवाद करना चाहते थे, और आप सोचेंगे कि संसार उनके बिना चल नहीं सकेगा, देखिए, और वे अपने विचारों में घमंडी हो गए, देखिए, परंतु एक बड़ा व्यक्ति बैठता है और आपको ये सोचने को तैयार करता है कि आप बड़े मनुष्य हैं, समझे, देखिए, वो अपने आप को दीन कर सकता है, और आप देखते हैं कि परमेश्वर इतना महान है, यहाँ तक कि वो स्वयं को दीन कर सकता है एक स्थान कि मनुष्य जाति इतने नीचे नहीं जा सकता। आप देखिए, बस यही है, और उनके में, और वे उसे ढूंढने का यत्न कर रहे हैं। अब देखिए, वे लड़कों को विद्यालय भेजकर उसे ढूंढने का यत्न कर रहे हैं, और कला में स्नातक डिग्री, और वे उसे बाइबल की धर्म विद्यालय की शब्दावली में ढूंढने का यत्न करते हैं, और वे उसे शिक्षा की योजनाओं में ढूंढने का यत्न करते हैं, और संस्थाओं की योजनाओं में, और चीजों को सुंदर बनाने के द्वारा ढूंढने का यत्न करते हैं। वो वहाँ पर नहीं है, वो वहाँ बिल्कुल नहीं है, आप बस हवा में मुक्के चला रहे हैं, बस आप उससे अलग होते जा रहे हैं। वे इतने बड़े हो सकते हैं कि पर्याप्त साधारण हो जाएं, वे इस दिशा में ढूंढ सकते हैं साधारण होने के द्वारा, परंतु जब तक आप बुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, आप उससे दूर जा रहे हैं। अब मुझे ये लेने दें कि आप इसमें ना चूक जाएं। जब तक आप बुद्धि के द्वारा परमेश्वर को ढूंढने का यत्न कर रहे हैं, जैसे ये अदन की वाटिका में था, जैसे ये मूसा के दिनों में था, जैसा ये नूह के दिनों में था, जैसा ये मसीह के दिनों में रहा, यूहन्ना के दिनों में, प्रेरितों के दिनों में, और इस दिन में, जब आप इसे चिन्हित करने का यत्न करते हैं और परमेश्वर को बुद्धि के द्वारा खोजते हैं, तो आप सारे समय उससे दूर जाते हैं। आप इसे समझने का यत्न करते हैं, इसे करने का कोई मार्ग नहीं है, बस इसे स्वीकार कर लें, समझे, बस इसका विश्वास कर लें, इसे समझने का यत्न ना करें। मैं इसे नहीं समझ सकता, क्यों, उतना अच्छा, बहुत सारी बातें, मैं बहुत सी बातें नहीं समझ सकता या समझ सकता हूँ। मैं नहीं समझ सकता कि ये युवा जो यहाँ बैठा है उसी खाने को खाता है जो मैं खा सकता हूँ, और उसके पूरे सर पर बाल हैं और मेरे सर पर कुछ नहीं, मैं ये नहीं समझ पाता। वे मुझे बताते हैं कैल्शियम इसे बनाता है, और मैं अपनी उंगलियों के नाखून बहुत नहीं काट पाता, और काटने के लिए बाल नहीं है, मैं ये नहीं समझता। जैसा कि पुरानी कहावत है, मैं ये स्थिति को बदलने का तरीका नहीं, गंभीरता, ये गंभीरता है, परंतु अभी मैंने मोहरों को अभी नहीं लिया है। कैसे, काली गाय हरा चारा खाती और सफेद दूध देती है जिससे पीला मक्खन निकलता है, मैं निश्चय ही इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। देखिए, क्योंकि आप देखते हैं कि प्रत्येक दूसरे का उत्पाद है, और ये कैसे होता है मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। मैं व्याख्या नहीं कर सकता कि कैसे दो लिलियां खड़ी हैं, एक ही जाति की, एक लाल है, दूसरी वाली पीली है और भूरी और दूसरी नीली। मैं ये नहीं समझता, एक ही सूरज उन पर है, ये रंग कहाँ से आते हैं, समझे? मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, परंतु फिर भी आपको इसे स्वीकार करना पड़ता है। बस मेरी इच्छा है कि कोई धर्म विज्ञानी मुझे इसकी व्याख्या दे कि कैसे ये पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थिर है। मैं चाहता हूं कि आप वैज्ञानिक शर्तों पर गेंद को हवा में घूमती हुई फेंके और वो एक ही स्थान में दूसरा चक्कर काटे, आप ये नहीं कर सकेंगे। और फिर ये सिद्ध समय में बंधी हुई है, यहाँ तक कि ये सूर्य के ग्रहण को बता सकते हैं अब से 20 वर्ष बाद मिनट में। इसके पास वे समय नहीं या घड़ी या समय कोई यंत्र कि वो इतना सिद्ध हो और फिर भी वो वहाँ स्थिर है और फिर पीछे को झुकी है। क्या हो यदि ये थोड़ी सी सीढ़ी हो? जी हाँ, आप बस अपने को मूर्ख बना लेते हैं कि कोशिश करते हैं। देखिए, इसलिए आप देखिए, बुद्धि पाने का यत्न ना करें कि समझें, जो वो कहता है बस उसका विश्वास करें, और जितना अधिक आप सादगी में हो सकते हैं तो आप उस स्थिति में हैं कि आप इसे पाएंगे। अब मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवादित हूँ कि वो है और स्वयं को साधारण बनाया। अब हम छठवें अध्याय और नवें पद में पाते हैं, अब मैं इसे आरंभ करूँ। और जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। ध्यान दें, यहाँ किसी दूसरे पशु का उल्लेख नहीं है या जीवित प्राणी का, इस पांचवी मोहर की उद्घोषणा। अब स्मरण रखें, ये चौथी मोहर पर था, ये पहली मोहर, दूसरी, तीसरी और चौथी पर, परंतु यहाँ कोई नहीं है, देखा? अब यदि आप ध्यान दें, आइए पीछे से एक मोहर को पढ़ें, आइए पीछे चौथी मोहर पर चलें, देखिए, और ये सातवां पद। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ देख। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ और देख। दूसरे प्राणी को आ देख और पहले प्राणी को कहते सुना, आ और देख। परंतु जब हम पांचवी मोहर को लेते हैं वहाँ कोई पशु नहीं है। अब बस ध्यान करें, जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे देखा, तुरंत ही देखिए, वहाँ नहीं, वहाँ कोई पशु नहीं है और पशु शक्ति को दर्शाता है, हम ये जानते हैं। देखिए, वहाँ कोई जीवित प्राणी नहीं है। अब उनमें से एक प्राणी, अब कलीसियाओं के प्रकाशन के अध्ययन में हम पाते हैं कि उनमें से एक के पास एक सिंह था और दूसरा वाला बैल था और दूसरा वाला एक मनुष्य था और दूसरा वाला एक उकाब था। हम कलीसियाई युगों में पाते हैं कि वे चार पशुओं का अर्थ चार शक्तियां, जो प्रेतों के कार्यों के चारों ओर एकत्र थी, जिस प्रकार से मंदिर जंगल में था। और आप इसे समझते हैं, क्योंकि मैं इसमें जाने के लिए समय नहीं लूंगा, हमने कैसे इसे इसमें से लिया था और ठीक ठीक दर्शाया। वे इसकी रक्षा कर रहे हैं, मेमना और वचन, वचन का पालन कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने किया, वाचा का संदूक जंगल में, पवित्र स्थान में और आदि आदि। अब हमने यहाँ तक की स्थिति अनुसार दर्शाया इसराइल के गोत्रों के रंगों के द्वारा कितनों ने सुना है? सात, वे सात कलीसियाई काल। मैं समझता हूँ अधिकांश, आधे, आप में से दो तिहाई। ध्यान दें, यहाँ तक कि पशुओं का स्वभाव ठीक उनके गोत्र के चिन्ह के अनुसार, जिस प्रकार से चार बारह गोत्र तय थे, चार प्रत्येक दशा में या तीन गोत्र प्रत्येक दिशा में और चार पशु बैठे और इन गोत्रों की रक्षा की उन चारों दिशाओं से। और जब हम बढ़े और सुसमाचारों को लिया और बिल्कुल ठीक ठीक दिखाया, जब आप वाचा के संदूक की ओर प्रवेश करते हैं, वे वाचा के संदूक की रक्षा कर रहे हैं, और तब हम नई कलीसिया की वाचा को पाते हैं। ये पृथ्वी पर पवित्र आत्मा को दर्शाता है, लहू हमारे ऊपर वापस भेजा गया, वो पवित्र आत्मा। और चार पशु ने दर्शाया, और जैसे इसराइल के बारह गोत्र, जैसे इसने रक्षा की और उनके स्वभाव और उन्हीं स्वभावों को लिया और उन चारों सुसमाचारों के ऊपर प्रत्येक पर ला रहा है, सही सही, बिल्कुल ठीक वैसे ही था। एक ने सिंह से बात की और दूसरे ने बैल से और दूसरा चार सुसमाचार। ये यहाँ पर हैं, चार सुसमाचार पवित्र आत्मा के रक्षक हैं। आमीन। मैं सदा आश्चर्य करता रहा, ये मेरे साथ लगा रहा। मैं समझता हूँ कि लगभग 6 वर्ष हो गए हैं जब से मैंने सुना है कि एक महान मनुष्य कहता है, जो कि था प्रेरितों के कार्य एक रूपरेखा थे। मैंने इसे बहुत बार सुना, परंतु एक मनुष्य को उसकी प्रतिष्ठा के साथ सुनना, एक प्रचारक और एक शिक्षक के समान, जिसने कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं, जिन्हें लोग हर जगह पढ़ते हैं, और ये कहते हुए कि प्रेरितों के कार्य वास्तव में कलीसिया में सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि प्रेरितों के कार्य इसकी ही नेव है, न कि रूपरेखा, नेव, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये परमेश्वर की नेव प्रेरितों की शिक्षा पर बनी है। ठीक है, मसीह सिर, वो कोने का पत्थर। और जब ये व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ और ये टिप्पणी की, मैं बस, मेरा हृदय बस बैठ गया और मैंने सोचा कोई आश्चर्य नहीं भाई, अब मैं मोहरों में देखता हूँ, ये प्रकट नहीं हुई थी, बस यही समझे, ताकि वे वहाँ खड़े हुए थे, परंतु वहाँ कुछ था, ये कह रहा था। अब ध्यान दें, वे रक्षा करते हैं। अब जब हम मत्ती 28:19 को लेते हैं और इस बात को मत्ती में होते हुए देखते हैं, जिसने सिंह को दर्शाया और वहाँ आ रहा है, हमने वहाँ ठीक पाया क्यों उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, और वहाँ वो हर वचन के साथ खड़ा हुआ है कि बपतिस्मे के पवित्र विश्वास की रक्षा करे, यीशु मसीह के नाम की। ठीक है, अच्छा, अब मैं कलीसिया युगों पर जा रहा हूँ, ध्यान दें। परंतु यहाँ जब हम 5वीं मोहर पर आते हैं, वहाँ कोई घुड़सवार नहीं जाता और घोषणा के लिए कोई पशु नहीं है। यहुन्ना केवल, मेमने ने इसे खोला और यहुन्ना ने इसे देखा, वहाँ रहने के लिए कोई नहीं है। अब आ देख, ध्यान दें, जीवित प्राणी की कोई सामर्थ नहीं, या वहाँ पर, और 6वीं मोहर पर वहाँ घोषणा के लिए कोई पशु नहीं, और 7वीं मोहर पर वहाँ कोई पशु घोषणा के लिए नहीं है, घोषणा के लिए कोई शक्ति नहीं। देखिए, इसे कोई नहीं करता। इस पर देखिए, इस पर 4वीं मोहर के बाद वहाँ किसी भी पशु की सामर्थ के साथ कोई घोषणा नहीं है, 5वीं, 6वीं या 7वीं मोहर से बिल्कुल नहीं। अब ध्यान दें, मैं इससे प्रेम करता हूँ, जैसे कि 4 घुड़सवारियों के समयों में, घुड़सवार एक वचन, 4 विभिन्न घोड़े, वहाँ एक पशु था जिसने सामर्थ की उद्घोषणा की। हर बार घुड़सवार दूसरे घोड़े पर सवार हो जाता है और सवारी करता हुआ आता, एक दूसरे प्रकार का पशु आता और इसकी घोषणा करता। ये एक महान भेद है, समझे, ये एक भेद है। क्यों? भेद की उद्घोषणा कर रहा है। क्यों नहीं वहाँ एक इस 5वीं मोहर पर है कि इसकी घोषणा करे? ये यहाँ पर है, प्रकाशन के अनुसार जो प्रभु यीशु ने मुझे आज दिया, देखिए, या इस भोर में, वो ये है, कलीसियाई युगों का भेद अब पहले ही समाप्त हो गया है। इस समय तक मसीह विरोधी का भेद इस समय प्रकाशित हुआ है। मसीह विरोधी अपनी अंतिम सवारी कर चुका, और हम उसे उसके पीले घोड़े पर पाते हैं, उसके बहुत से रंगों से मिला हुआ, और विनाश के लिए सवारी करता है। हम इसे तुरहियों पर लेते हैं और आदि आदि, जब हम इसे सिखाते हैं। मैं अब इस पर जाऊंगा, परंतु हम फिर विषय से हट जाते हैं, और हम जाते हैं, वो सवारी करता है। यही कारण है कि वहाँ कोई नहीं है। अब हमारे पास लिखित कारण नहीं, किसी चीज का कोई कारण है। अब आपको स्मरण है, पहले आरंभ में मैंने कहा कि बिना कारण के कुछ भी नहीं है। उस छोटी स्याही की बूंद को याद रखें, समझे। अब आपको कारण मालूम करना है, वहाँ कोई कारण है कि वहाँ कोई पशु नहीं है, या एक सामर्थ कि इसकी घोषणा करे कि मोहर तोड़ी गई है, और केवल परमेश्वर प्रकट कर सकता है। यही है, क्योंकि ये सब उसमें है।
But the reason that he reveals it, as I understand,
परंतु कारण ये कि वो इसे प्रकट करता है, जैसा कि मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि छुटकारे की पुस्तक का भेद जहाँ तक मसीह विरोधी प्रकट हुआ है और उसी समय में कलीसिया चली गई और ये बातें कलीसियाई युग में हुई ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ठीक बात है, वे कलीसियाई युग से अलग है। कलीसिया पूरी रीति से इस समय ऊपर उठा ली गई है, कलीसिया ऊपर गई प्रकाशित वाक्य के चौथे अध्याय में, और तब तक राजा के साथ वापस नहीं आती 19वें अध्याय में। परंतु ये मोहरे यहाँ प्रकट हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या है और क्या होगा, समझे। और अब कलीसिया काल के लिए क्या होना था, इन मोहरों के द्वारा प्रकट किया गया। और अब ध्यान दें कि क्या होता है। घुड़सवार की चारों स्थितियां प्रकट हो गई हैं, मसीह विरोधी की चारों स्थितियां घुड़सवारी की इस समय प्रकट हो गई है, इसलिए उनके पास और कुछ नहीं है। और वहाँ परमेश्वर के चार जानदार प्राणी थे कि घुड़सवार की घोषणा करें, जैसे वे सवारी करते हैं। चार पशु चार शक्तियाँ हैं। अब हम जानते हैं कि पशु बाइबल की शब्दावली के अनुवाद के द्वारा चिन्हों से अर्थ है शक्ति। अब हम और पास आ जाएं। बाइबल में चार पशु हैं जो कि लोगों के बीच में शक्ति को दर्शाते हैं। अब यदि हम जैसे डैनियल में पाते हैं, जब उसने विशेष राज्य को उठते देखा, ये हो सकता होगा एक भालू, एक पसली, एक और प्रतीक में, तब उसने दूसरी शक्ति को उठते देखा, एक बकरी, ये किसी चीज को दर्शाता है, तब उसने एक और सामर्थ को उठते देखा और ये एक चीता बहुत से सिरों वाला, ये किसी विशेष राज्य को दर्शाता है, तब उसने एक और को उठते देखा, एक बड़ा सिंह दांतों के साथ और बचुओं को रौंदता है, जो कि विभिन्न शक्तियों को दर्शाता है। कुल मिलाकर एक नबूकत नजर का राज्य है और दूसरा स्वप्न का प्रतीक। डैनियल ने एक दर्शन देखा, नबूकत नजर ने एक स्वप्न देखा, परंतु डैनियल ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया और उसके दर्शन के साथ सही था। आमीन। ओह, यदि आप बस जाने कि क्या हुआ, इसके पहले हम छोड़े क्या हुआ, आप समझे क्यों छह सीधे सीधे स्वप्न ठीक दर्शन के साथ आए। आमीन, समझे। एक स्वप्न का अनुवाद एक दर्शन है, क्योंकि एक व्यक्ति हो सकता है अपने उपविवेक के साथ टिकने के साथ नहीं जन्मा। जब वो ये देखता है, वो जागा रहता है, तब परमेश्वर उसके उपविवेक को लेकर उससे बातें करता है, जो कि वो इसकी प्रतिज्ञा स्वप्न में करता है। इन अंत के दिनों में वो लोगों से मिलेगा और दर्शनों से भी, समझे। अब एक दर्शन, जब आप पूरी रीति से जागे रहते हैं, इस प्रकार से खड़े रहते हैं और निश्चित बातें प्रकट की गई और खड़े होकर उन्हें ठीक ठीक बताता है, देखिए क्या हुआ और क्या होने जा रहा है और आदि आदि। परंतु अब एक स्वप्न, जब आप सोए हुए हैं और आपकी पांच इंद्रियां सुप्त हैं और आप अपने उपविवेक में हैं, आप कहीं हैं, क्योंकि जब आप वापस आते हैं आप याद रखते हैं कि आप कहाँ थे, अपने सारे जीवन याद रखते हैं, समझे। इसलिए ये आपका उपविवेक है। तब इस प्रकार से देखिए, जैसे कांग्रेसमैन अपशॉ कहा करते थे, आप वो नहीं हो सकते जो आप नहीं हैं, और ये ठीक बात है, देखिए। और तब यदि आप भविष्यद्वक्ता जन्मे हैं, अब आप देखिए, ये करने को वे दोनों विवेकों को एक साथ होना चाहिए, न कि एक यहाँ पांच चेतनाओं के साथ और दूसरा यहाँ जब आप सोते हैं और पांच इंद्रियां क्रियाशील नहीं हैं। परंतु आप देखिए, जब वे दोनों आप एक साथ लेकर जन्मे, तो आपको सोना नहीं है, बस एक से दूसरे में जाना, इस प्रकार से आपको सोना नहीं है, वहाँ सोने के लिए जगह नहीं है और आप अपने को उस प्रकार नहीं बना सकते। इसलिए वरदान और बुलाहट परमेश्वर के पहले से ठहराए हुए हैं, वे परमेश्वर के वरदान और बुलाहटे हैं, यहाँ तक कि बिना प्राश्चित के, बाइबल ने कहा, समझे, वे पृथ्वी के बनने के पहले अभिषिक्त हैं, समझे। अब हम ये पाते हैं कि एक पशु डैनियल का, इसका अर्थ है कि एक शक्ति लोगों के बीच में से उठ रही है, ठीक है, और यहुन्ना को दर्शन में भी दर्शाया कि ये शक्तियां राज्य उठ रहे थे जैसे संयुक्त राज्य प्रकाशित वाक्य 13 में प्रकट होता है एक मेमने के समान। और तब यदि आप जानना चाहते हैं अंतर, आप कहते हैं भाई ये राष्ट्रीय शक्ति के विषय में बात कर रहा है, ये पवित्र सामर्थ्य को भी दर्शाता है एक पशु, क्या आप ये जानते हैं? ध्यान दें रिबका, जब अब्राहम का दास एलियाजर जब वो रिबका को लेने आया, वो उसने उसे ऊंट पर बैठाया, वही ऊंट जिसे उसने पानी पिलाया, वो उस ऊंट पर चढ़ी अपने उस अनदेखे दूल्हे से मिलने के लिए, वही जिसे पानी पिलाया उसी चीज ने उसे उसके भविष्य के घर पर और पति तक पहुंचाया। और यही बात आज है, देखिए वही चीज जिसे कलीसिया सींच रही है, वही वो बीज है, वचन का वो बीज, ये वही वचन जो जीवित हो गया और हमें हमारे ना दिखाई देने वाले दूल्हे के पास ले गया, समझे। और देखिए कितना सिद्ध, इसहाक ने घर छोड़ा और बाहर मैदान में था घर से दूर, जब रिबका ने उसे देखा और कलीसिया मसीह से हवा में मिलती है और फिर वो उसे घर में ले जाता है जहां महल तैयार किए गए हैं। इसहाक ने रिबका को उसी प्रकार से लिया। और ध्यान दे, ये पहली दृष्टि का प्रेम था, ओ प्रभु, वो उससे मिलने के लिए दौड़ी। और इसी प्रकार से कलीसिया मसीह से मिलेगी हवा में और सदा उसके संग रहेगी। अब बाइबल की शब्दावली, ये पशु सामर्थ है, ध्यान दें। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें। शैतान के ये चार बदलने वाले रंगीन पशु हैं जो आगे बढ़ते हैं, उसके अपने चार पशु और उनमें से वे तीन ने अपने रंग एक में डाल दिए और उसे एक पीला घोड़ा बना दिया, सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा। और हमने उनमें से प्रत्येक को देखा कि वो उसकी सेवकाई की एक स्थिति थी उस आरंभिक कलीसिया में जो कि एक नामधारी में बदल गई थी, नीसिया में, वो मूल पेंतिकोस्तल कलीसिया जिस पर की पवित्र आत्मा उंडेला गया था, नीचे आते हुए मसीह विरोधी आत्मा को ले लिया और एक संस्था बना ली और कुछ संस्थागत पुत्रियों को जन्म दिया। तीन बार अपनी शक्ति को बदल रहा है और उन्हें एक में डाल रहा है और एक पीला घोड़ा बना रहा है और तब एक नाम दिया जो मृत्यु कहलाया और सवार होकर अनंतता में चला गया, उतना ही स्पष्ट जितना हो सकता है। अब ध्यान दें, उसे ये घोड़ा दिया गया और वो इस पर सवारी कर रहा है। परमेश्वर ने भी जैसे हर बार, अब ध्यान दें, जब मसीह विरोधी पहली बार प्रकट हुआ तो वो किस में प्रकट हुआ? सफेद घोड़ा। देखिए क्यों निष्कपट जितना वो हो सकता है, कलीसिया में बस एक शिक्षा, वे संगति चाहते थे, आपकी संगति मसीह के साथ है, परंतु उन्होंने एक संगति चाही, वे बस स्थिर नहीं रह पाए, वे पाना चाहते थे। भाई आप जानते हैं एक छोटे गुट के समान वे कलीसिया में उठेंगे, आप ये जानते हैं, आप पास्टर लोग समझे, वे जैसा वे कहते हैं एक से पंखों की चिड़िया, परंतु यदि हम नया जन्म पाए हुए हैं भाइयों तो ये व्यवहार नहीं करना है, देखिए नहीं। अब हम यदि अपने भाइयों में कुछ गलत देखते हैं तो बस हम प्रार्थना करें और इसे परमेश्वर के सामने रखें और उस मनुष्य से प्रेम रखें जब तक कि हम उसे परमेश्वर की उपस्थिति में ना ले आए, समझे, यही विधि है वास्तव में करने के लिए, यही है। आप जानते हैं कि यीशु ने कहा वहाँ पर खरपतवार होगी, क्योंकि यीशु ने कहा वहाँ होगी, परंतु उन्हें उखाड़ो नहीं, आप उसके साथ गेहूं उखाड़ दोगे, उन्हें बस बढ़ने दो, वो करेगा, जब समय आएगा तो वो उसे अलग करने दो, समझे, इसे एक साथ ही बढ़ने दो। ध्यान दें, जैसे पशु बाहर आता है, मसीह विरोधी पशु पर चढ़कर आता है उसकी शक्ति, ओ मुझे ये पसंद है, मुझे अब धार्मिक अनुभूति होना आरंभ हो गई है, इसी समय देखिए संभव है उत्तेजना। ध्यान दें, जब मसीह विरोधी, ओ वे प्रकाशन, उस आग के गोले की उपस्थिति में कमरे के अंदर, जब तक, ओ भाई, यद्यपि मैंने उसे देखा बचपन से, हर बार वो मेरे समीप आता है, मुझे चेताता है, वो मुझे लगभग अवचेतन अवस्था में डाल देता है, आप कभी भी उसके अभ्यस्त नहीं होंगे, आप नहीं हो सकते। ये बहुत ही पवित्र है। ध्यान दें, जैसे कि मसीह विरोधी आगे बढ़ता है 4 में अपने पशु की सेवकाई में, तो वहाँ परमेश्वर इसके मुकाबले में पशु भेजता है, समझे? अब ध्यान दें, तब हर बार वो पशु सवारी करता है अपने घोड़े पर, मसीह विरोधी अपने घोड़े पर, अपने पशु पर, कि अपनी सेवकाई को घोषित करे। परमेश्वर भी अपना पशु भेजता है और वो उस पर था कि अपने विरोध को उसके मुकाबले में घोषित करे। अब वचन कहता है, जब शत्रु बाढ़ के समान आता है तो पवित्र आत्मा उसके विरोध में अपना स्तर ऊंचा कर देता है। और इसलिए जब शत्रु मसीह विरोधी के समान आगे बढ़ता है, परमेश्वर विशेष प्रकार की सामर्थ्य उसके मुकाबले पर भेजता है। और तब जब वो फिर बाहर आता है, एक लाल घुड़सवार के समान, दूसरा रंग, दूसरी शक्ति, दूसरी सेवकाई, परमेश्वर दूसरा वाला उसके पीछे भेजता है कि युद्ध करे, कि अपनी कलीसिया को थामे रहे। तीसरा वाला भेजा, फिर परमेश्वर ने अपना तीसरा पशु भेजा, आ और इसकी घोषणा कर। उसने चौथा वाला भेजा, परमेश्वर अपना चौथा वाला भेजा, और फिर मसीह विरोधी का अंत और कलीसियाई कालों का भी अंत हो गया। उस समय ध्यान दें, अब ओ ये वास्तव में अच्छा है। अब हम देखते हैं कि शैतान बदल रहा है। 4 पशुओं का अर्थ किस शक्ति में वे प्रकट किए गए थे, या वो किस सामर्थ्य में संसार पर प्रकट हुआ, और कैसे वे इस पीले में समाप्त हो गए, मृत्यु का घोड़ा। अब आइए परमेश्वर की सामर्थ्यों को देखते हैं, इन पशुओं की, कि उनका विरोध करें। परमेश्वर का पहला पशु कि वो मसीह विरोधी का सामना करने निकला, वो मसीह विरोधी आत्मा, जब वो केवल अपनी शिक्षा में था। अब स्मरण रखें, जब पहले मसीह विरोधी ने सवारी की, वो शिक्षा की सेवकाई में था। मसीह विरोधी ने पहली सवारी शिक्षा की सेवकाई में की। अब ध्यान दें, वो जो उसके मुकाबले पर निकला, सिंह, वो यहूदा के गोत्र का सिंह, जो कि वचन है। जब उसकी गलत शिक्षा आगे बढ़ी, सच्चा वचन उसके मुकाबले पर निकला। यही कारण है कि हमारे पास इरेनियस और पॉलीकार्प थे, और वे लोग, एक संत मार्टिन। जब मसीह विरोधी अपनी झूठी शिक्षा के साथ सवारी कर रहा था, परमेश्वर ने अपनी शिक्षा भेजी, वचन, यहूदा के गोत्र का वो सिंह, जो कि वचन पवित्र आत्मा में प्रकट हुआ, और वहाँ पवित्र आत्मा स्वयं को प्रकट करता है, जो कि वचन है। यही कारण है कि आरंभिक कलीसिया में चंगाइयां थी, और आश्चर्यकर्म और दर्शन और सामर्थ्य थे, क्योंकि ये जीवित वचन था, यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में उसके मुकाबले के लिए सवारी कर रहा था। आमीन। अब आप इसे समझे, वो मसीह विरोधी अपनी सामर्थ भेजता है, परमेश्वर अपना वचन भेजता है। मसीह विरोधी झूठी शिक्षा, सच्ची शिक्षा उसके साथ आगे बढ़ी कि इसका विरोध करे। अब ये पहला वाला था, अब ये पहली प्रेरिताई कलीसिया थी जो उसका मुकाबला करने गई। अब दूसरा पशु जो मसीह विरोधी ने भेजा, वो लाल पशु था, जिसे की करना था, जिस पर उसने सवारी की, पृथ्वी पर से शांति उठानी थी और युद्ध। अब दूसरा वाला जो उसके मुकाबले के लिए निकला, बैल पशु था। बैल का अर्थ एक मजदूर, एक बोझ उठाने वाला पशु। अब यदि हम जरा एक मिनट के लिए रुक सकें, मुझे होने दें, जी हाँ, मुझे होने पाए कि आप अब इससे निश्चित रूप से देखने पाए। अब ये इस प्रकार की आपके लिए थोड़ी दुविधा हो, परंतु आइए यहाँ थुआथीरा को लें, ध्यान दें और देखें यदि ये क्या परिश्रम करने वाली कलीसिया नहीं। आप देखिए, थुआथीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देखिए, अब सब कार्यों में हो गया, देखिए, क्योंकि यही है जो उसके साथ सवारी कर रहा है। तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, देखिए ये सब हैं, और तेरे पिछले काम, फिर दोबारा से तेरे कामों, पहले से बढ़कर हैं। देखिए, ये थुआतीरा के युग को दर्शाता है। मसीह विरोधी के तय हो जाने के बाद और थुआतीरा युग में आता है। वो छोटी कलीसिया कुछ नहीं कर सकी, परंतु बस साधारण सा परिश्रम। और दूसरी बात, बैल बलिदान का पशु भी है, समझे? वे अपने जीवन ऐसे ही मुफ्त में देते हैं जितना कि वे दे सकते हैं। अंधकार के युगों में 1000 वर्ष वहाँ कैथोलिकों ने संसार पर नियंत्रण रखा और वे सीधे सीधे आगे बढ़ते चले गए, हाँ या नहीं। उन्होंने मरने की कोई चिंता नहीं की। यदि ये मृत्यु थी, ये ठीक बात है, वे गए और मर गए। जो भी हो, क्यों? उस युग की वही आत्मा थी। यही कारण था कि वे, यही कारण कि इरेनियस, यही कारण पॉलिकार्प, यहुन्ना, पौलुस, वे महान सामर्थी लोग वहाँ पर उस बात का मुकाबला करते हैं। पौलुस ने ये देखा, उसने कहा, मैं जानता हूँ मेरे चले जाने के बाद वे भेड़िये तुम्हारे बीच में घुस आएंगे। भाइयों, बिगड़ी शिक्षा दे रहे हैं और ये आपको भटका देगी। उन कठोर साधारण बूढ़े चेले को वहाँ खड़ा देखो, उसकी पीठ कोड़ों से भरी पड़ी है, उसकी आंखों में पानी, परंतु वो अपने आगे का देख सकता था। वो कार्य क्षेत्र उसके सामने चल रहा था। वे सैकड़ों 20 करोड़ प्रकाश वर्षों ज्योति के क्षेत्र को देख सकते थे। वो सीधा अनंतता में देख सकता था। वहाँ वो था और उसने इसकी भविष्यवाणी की और कहा, यही जो घटित होगा। और ये भी कहा, बढ़ते हुए आने वाले युग में गया। अब ध्यान दें, वहाँ वो था। उसके बाद बढ़ते हुए संत यूहन्ना सबसे अधिक जीवित रहा। और जब संत यूहन्ना सारी पवित्र पत्रियों को, जो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त थी, लेने का यत्न कर रहा था और एक साथ जमा कर रहा था कि बाइबल बनाए, रोमी शासक ने उसे पकड़ लिया और उसे पत्मोस टापू पर डाल दिया। वो पत्मोस टापू पर परमेश्वर के वचन के कारण था। पॉलिकार्प अनुवाद में उसकी सहायता कर रहा था। उस दिन मैंने वो पत्र पढ़ा जो मरियम ने स्वयं पॉलिकार्प को लिखा था, और उलहना, उसे उलहना नहीं परंतु उसे आज्ञा दी, एक बहादुर व्यक्ति होने के नाते जो कि सिखा सकता था और यीशु मसीह की शिक्षा को स्वीकार करता है, उसकी जो उससे परमेश्वर की ओर से जन्मा। मरियम की अपनी टिप्पणी जो उसने पॉलिकार्प को लिखी। आप जानते हैं, पॉलिकार्प को सिंहों को खिला दिया गया, नहीं, वो जलाया गया था। उनके लिए इस बात के लिए देरी हो गई थी कि खेल के अखाड़े में शेरों को छोड़ें, इसलिए उन्होंने एक स्नान गृह को तोड़ा, एक पुराना स्नान गृह, और उसे अखाड़े में लाए और उसे जला दिया। और वो अपने मार्ग पे जाते हुए वो अपना सिर झुकाए जा रहा था। रोमी सिपाही ने कहा, आप एक बूढ़े व्यक्ति हैं और अच्छे सम्मानित, आप क्यों नहीं उस चीज को अस्वीकार कर देते हैं? वो बस आसमान की ओर ताकता रहा और कहीं से एक आवाज आई। वे समझ नहीं सके कि कहां से। कहा, पॉलिकार्प, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ओह, क्यों? वो वचन के साथ खड़ा था। और जब वे उस पर उसे जलाने के लिए तख्ते लगाने लगे, तो वहाँ स्वर्गीय संगीत नीचे उतर आया और कहीं से स्वर्गदूतों के द्वारा गीत गाया गया। उसने एक बार भी अपने उपहास उड़ाने वालों पर पलक नहीं झपकी। वे बहादुर लोग थे, ये लोग जो खड़े रह सकते थे, युगों से शहीद होते आए, भयानक दुख उठाए, परंतु वे क्या थे? वे प्रेरणा में थे, परमेश्वर का आत्मा सामर्थ। मैं इस कलीसिया को ना भूलें, और आप भाई लोग जो टेप पर हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे जांचें। कैसे कोई भी मनुष्य कैसे कुछ कर सकता है बिना परमेश्वर के सामर्थ के जो उनके लिए दी गई? मैं इस डिब्बे को यहां रखने जा रहा हूं कि इसको दर्शाए। यदि परमेश्वर उनके मध्य में विशेष आत्मा भेजे, केवल वही चीज है जिसके द्वारा वे कार्य कर सकते हैं, वे आत्मा जो उनके बीच में कार्य करता है। अब हम इसे आपको सिद्ध करेंगे कलीसिया के इतिहास के द्वारा और मोहरों के खोलने के द्वारा, और वो सामर्थ जो छोड़ी गई, और सही प्रकार से देखें कि कलीसिया ने अभिषेक का उत्तर दिया, वरना वे कुछ नहीं कर सकते थे। अब पहला सिंह था जो गर्जा, वो शुद्ध बिना मिलावट का वचन। दूसरा थुआतीरा में बैल था, और ये एक बोझ था, एक पशु का बोझ, मुझे क्षमा करें, और ये बलिदान का भी पशु था। और क्या वो सही में निर्धन छोटी कलीसिया नहीं थी? रोम वहाँ बस चुका था उन हजारों वर्ष के अंधेरे युग के लिए, और कोई भी चीज जो रोमी कलीसिया को नहीं दर्शाती थी, उसे तुरंत मौत के घाट उतरना था। और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान परिश्रम करना था। आप राजमिस्त्रियों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आपको क्रूस का चिन्ह याद है? अब आप जानते हैं कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। अब ध्यान दें। अब यदि आप ध्यान दें, ये भार वाहन करना और बाइबल को सुरक्षित करना था, समझे? और उन्हें एक दूसरे में परिश्रम करना था। आप उसी स्थान पर हैं, बैल। और जब ये समय आया, हमने इसे बीती रात्रि पढ़ा था। देखिए, जब चीजें आगे बढ़ी और बलिदान आता है और उन्हें जाना ही था, उसने कहा, तू दाखरस और तेल की हानि ना करना। उन्होंने क्या किया? वे स्वेच्छा से आगे बढ़े और मर गए। उन्होंने चिंता नहीं की, क्योंकि उन दिनों में कलीसिया की आत्मा बलिदान की थी, श्रम, और वे उतनी ही स्वतंत्रता से आगे बढ़े जितना वे जा सकते थे, उस युग के परमेश्वर के आत्मा से अभिषिक्त और वीरों के समान मर गए। एक बलिदान, हजारों हजारों, 6,80,00,000 का उनमें से अभिलेख है। बैल, बलिदान, ओ प्रभु, क्या आप इसे समझते हैं? अच्छा, ठीक है। अब बलिदान, ये केवल उस युग में परिश्रम कर सका कि विरोध का मुकाबला करे उन हजार वर्षों के लिए। अब तीसरा पशु जो शैतान के पास से निकला, वो ये काला घोड़ा, समझे? अब वो तीसरा पशु जो निकला परमेश्वर की ओर से सामर्थ कि उसका विरोध करे, उस काले घोड़े की सामर्थ का मुकाबला करे, एक मनुष्य था, चालाक, तेज, परमेश्वर की बुद्धि के साथ। अब जानते हैं, एक मनुष्य किसी भी पशु से बुद्धिमान है, समझे? वो अधिक तेज है, क्योंकि वो अधिकांश अपनी चालाकी से मात दे सकता है। वो चतुर चालाक है, समझे? और वो युग अंधकार के युग से अब अंधकार के युग से आ रहा था। अब इस दूसरी ओर, जब ये काले घोड़े की सवारी, जब उन्होंने उनके बलिदान को बदला और सारी चीजें उन्होंने की, और केवल धन था, ओ आप जानते हैं ये कैसे था। अब अगली चीज जो मुकाबले के लिए निकली, वो पशु एक मनुष्य के मुख के साथ था, तेज, शिक्षित, चालाक, अच्छा, उस दिन की आत्मा से अभिषिक्त। आप इस पर ध्यान दें। अब वो इसके मुकाबले के लिए निकला परमेश्वर की चतुराई की बुद्धि के साथ। वो सुधार का युग था, मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली और आदि आदि। देखिए, ये सुधार था, जिंगली और ओ, जो कि सारे नॉक्स, कॉलविन और जो सारे, देखिए आगे बढ़े, ये एक चतुराई थी। अब आप ध्यान दें, ठीक अंधेरे युग से, सुधार से, ये एक मार्ग, ध्यान दें, ये मनुष्य की चालाकी थी। यदि आप अपनी खिड़कियां थोड़ी सी नीचे गिरा दें, मैं विश्वास करता हूं लोगों को थोड़ी सी गर्मी लग रही है। जी हाँ, हो सकता है वहां पर, यदि आप खिड़की थोड़ी सी नीचे कर दें, क्योंकि मैं जानता हूं यदि मुझे यहां खड़े होकर प्रचार करते हुए गर्मी लग रही है, मैं जानता हूं आपको तो वहां लगनी ही है। भाई ध्यान दें, ये मनुष्य का चालाकपना था। अब क्या आप समझते हैं, वो तीसरा पशु जो शैतान ने भेजा, वो भी चालाक हो गया। ध्यान दें, दिनार का शेर भर गेहूं, दिनार का 3 शेर जौ, समझे? ओ प्रभु, समझे? धन कमाने की योजना, चालाकपना, संसार का सारा सोना ले लेना और धन अंदर ले आना, ये जो ठीक ठीक पूरा करना, यही जो आरंभ किया, प्रार्थनाओं के लिए भुगतान लेना और एक स्थान बनाया जो अग्निशोधक कहलाया, और उनके पूर्वज को बाहर निकालने के लिए प्रार्थना की, और ओ, आपको अपने कार्यों के लिए वसीयत करनी थी, और हर चीज, आपकी संपत्ति, कलीसिया और राज्य एक ही चीज थे, और कलीसिया ने आपकी संपत्ति का अधिकार ले लिया। और क्या आप इन कुछ सुसमाचार प्रचारकों को नहीं देखते आज के दिन? उनके ऊपर अब भी वही अभिषेक है। बूढ़े लोग अपनी पेंशन दे देते हैं और अपने घरों और निश्चित चीजों की वसीयत कर देते हैं। क्यों भाई, मैं इसे नहीं लेना चाहता, देखिए, परंतु अब मैं ठीक इसके साथ बना रहूंगा। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, मैं कहां जा रहा हूं। अब ध्यान दें, वे लोग, ये उन पर निर्भर करता है, ये इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस यहाँ इसके लिए उत्तरदायी हूँ। अब ध्यान दें, पशु इसका मुकाबला करने को आता है। अब मनुष्य था, और हम सब ये जानते हैं कि ये पशु मनुष्य का मनुष्य की ये शक्ति उसकी चतुराई पहचान गया कि वो शुद्ध खाने की वस्तु जो मार्टिन लूथर के हाथ में थी जब वो उन सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, उन्होंने कहा ये यीशु मसीह का लहू है, ये यीशु मसीह की देह है। और लूथर ने उसे फेंक दिया और कहा ये रोटी और दाखरस है, ये मसीह की देह नहीं है, क्योंकि ये ऊंचे पर चढ़ाई गई और परमेश्वर के देने हाथ बैठी है, बिचवाई कर रही है। देखिए बुद्धि, देखिए मनुष्य। और अब जॉन वेस्ली आया इसके बाद कि जुंगली आ चुका था और कॉल्विन, और वे कलीसिया को एक स्थान पर ले आए, सुरक्षा पर, यहाँ तक कि उन्होंने और बेदारी नहीं चाही। जो कुछ भी होने जा रहा है वो होता रहा है, यही सब था। और कि वे किसी भी प्रकार का जीवन जिए, वो लूथरन कलीसिया इतनी मार से हट गई और एंग्लिकन कलीसिया, ओ प्रभु, कि सारा राष्ट्र भ्रष्ट हो गया जैसा कि ये अब है। कलीसियाएं भटक गई थीं जब राजा हेनरी आठवां और इंग्लैंड में आया और लहू से भरी मरियम के बाद, और ये सारी चीजें घटित हुई, और फिर कलीसिया हिंसा और भ्रष्टाचार से इतनी भरी हुई थी। बहुत से मसीहत का दावा कर रहे थे और चार या पांच पत्नियों के साथ रह रहे थे, या वे जो चाहते थे कर रहे थे, और चल रहा था और गंदगी। जॉन वेस्ली वचन का अध्ययन कर रहा था, इसे देख रहा था, उसके ऊपर ये प्रकट हुआ कि यीशु मसीह का लहू विश्वासी को पवित्र करता है और आप नहीं चाहिए। तब उसने क्या किया? वो दूसरे सुधार में बाहर आया। उसने अपने दिन में संसार को बचाया जैसे लूथर ने किया, समझे? ये क्या था? वो मनुष्य पशु की सामर्थ बाहर आ रही थी, मनुष्य को समझ की बुद्धि दे रही थी कि ये बात गलत है, ये यीशु मसीह का लहू नहीं है, ये यीशु मसीह की देह नहीं है, ये देह को दर्शाता है, समझे? ये अब भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच में एक बड़ा विवाद है। यही केवल एक चीज है जिस पर आप इस समय एक स्थान पर नहीं आ सकते, हर चीज वे एक साथ मिल सकते हैं, परंतु ये उन सभाओं में उनमें थी, अब ध्यान दें, परंतु ये वे इस पर एक साथ नहीं हो सकते, समझे? एक क्या लहू और कहते हैं ये स्वाभाविक लहू है कि पुरोहित के पास अधिकार है कि इस रोटी को मसीह की स्वाभाविक देह में बदल दे। यही जो छोटा सा आराधनालय है कलीसिया में है, आप जानते हैं, यही कारण है कि वे निशान बनाते हैं और किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजक, जैसे वे वहाँ पास से जाते हैं, आप जानते हैं, और अपने को झुकाते हैं और अपनी टोपियाँ उतारते हैं और आदि आदि। ये उस इमारत को नहीं, ये उस खाने की चीज को जो उस आराधनालय में है। और ध्यान दें कैसे शैतान ने इसे चालाकी से खींचा। परंतु देखिए उस समय मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने बुद्धिमानी की आत्मा मनुष्य पर रखी कि ये समझे कि ये गलत है। अब ये तीसरे पशु के विरोध में जिसने कलीसिया को इतना भ्रष्ट कर दिया कि वो सवारी कर रहा था कि ये भयानक था, सुधारक। तब उन्होंने क्या किया? वे सुधारकों के युग में वे कलीसिया को पागान के मूर्ति पूजक धर्म क्रियाओं से वापस परमेश्वर के वचन पर लाए, समझे? यही जो पशु आगे बढ़ा, मनुष्य की ये चालाकी सवार कि ये करे। अब परंतु अब तीसरा पद पढ़े, और यानी प्रकाशित वाक्य 3:2, जरा एक मिनट, अब मैंने इस पर किसी कारण से निशान लगा रखा है। अब ये है, भीतर आता है लूथरन का युग, सुधारकों के युग में, प्रकाशित वाक्य 3:2 का। उन्होंने क्या किया? वे संगठित हो गए। जैसे ही लूथर ने अपनी कलीसिया आरंभ की, उन्होंने इसे संगठित कर लिया, ठीक है। यही चीज वेस्ली ने की, यही चीज पेंटिकॉस्टल ने की, ठीक, इसे संगठित किया। और वे क्या करते हैं? वे उसी ढंग को लेते हैं जिससे वे बाहर निकल आए, समझे? अब इस पर ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य इस सार्दिस कलीसिया के लिए बोल रहा है, कलीसिया के दूत को, निसंदेह ये पहला पद है, समझे? ठीक है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर। ये है वो वचन जो तुझे सिखाया गया। देखिए वे बातें जो बची हैं, जो मिटने को हैं, तब वो ठीक आरंभ करने के लिए तैयार है कि संस्था बनाए, जैसे कि कैथोलिक कलीसिया जिसमें से वो निकल कर आया, समझे? क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। वहाँ आप जाते हैं, वहाँ पर, वहाँ वो जाता है ठीक फिर से वापस। क्या आप नहीं देखते कि क्यों संस्था की व्यवस्था गलत है? इसे किसने शुरू किया? क्या परमेश्वर ने किया? क्या प्रेरितों ने किया? रोमन कैथोलिक ने ये किया। अब जरा कोई भी इतिहासकार भिन्न कहता है, ये वहाँ नहीं है, वे हैं, वे कहते हैं वे आरंभ की कलीसिया हैं, और वे हैं, परंतु उन्होंने चीजों को संस्थागत कर दिया और एक तंत्र मनुष्य के मस्तिष्क के साथ उसमें डाल दिया, और हमने एक मनुष्य को नहीं लिया जैसा उन्होंने किया। हम मनुष्यों की सारी सभा को लेते हैं, उन्हें एक साथ करते हैं, और तब आप वास्तव में भ्रमित हो गए। ये ठीक बात है। कैसे एक सभा सकती है? जो भी है, ये इस प्रकार हम सोचते हैं प्रजातंत्र ठीक है, मैं भी यही विश्वास करता हूँ, परंतु ये कभी भी सही काम नहीं करेगा, ये नहीं सकता। उन आवारों के झुंड के साथ यहाँ इसे चलाते हैं। कैसे आप इसे संसार में आप इसे ठीक करने जा रहे हैं? आप नहीं सकते। ध्यान दें, वास्तविक चीज एक धर्मी राजा था। ध्यान दें, पशु, तीसरा पशु अब एक मनुष्य की चतुराई थी, और उसने सुधारकों का प्रतिनिधित्व किया जो आगे बढ़ा। मूर्ति से लेते हुए कहते हैं, ये रोटी है, ये दाखरस है। देखिए, मसीह विरोधी के पास अब भी मसीहत के प्रतीक के रूप में कुछ होना है, उसके पास होना ही है, क्योंकि वो विरोध में है। आप देखिए, और तब यदि उसे किसी चीज के विरोध में होना है, अब यदि वो आकर कहता है ओ मैं एक बुद्धा हूँ, तो भाई इससे कुछ नहीं, वे ये सब ये करते हैं, बस ये एक मूर्ति पूजा है आरंभ से। परंतु मसीह विरोधी चालाक है, उसके पास सब प्रकार की चीजें हैं जो वहाँ मसीहत का प्रतिनिधित्व करती हैं, केवल इसे दूसरी ओर कर देती है, कुछ जो मूल शिक्षा के विरोध में है। देखिए, यही इसे मसीह विरोधी बनाता है, समझे? इसलिए सुधारक जब पशु मनुष्य के रूप में होकर आगे बढ़ता है कि इसका मुकाबला करे। अब क्लास इसे ना भूलें, समझे? इसे याद रखें अपने जीवन के सारे दिनों में, समझे? ये पशु सही है, ये यहोवा यूं कहता है, समझे? ध्यान दें, मूर्ति पूजा लेकर आई, ये मनुष्य पशु परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ा, उस बुद्धि के साथ जो परमेश्वर ने उसे दी, और कलीसिया को मूर्ति पूजा से वापस परमेश्वर के पास ले आया। परंतु इसमें हम इसी कलीसिया युग में पाते हैं, जब उन्होंने नामधारी होना आरंभ किया, उसी चीज को करते हैं जो उन्होंने आरंभ में किया, जो रोम ने किया। अब वो उस कलीसिया के लिए पुत्रियां बनाने जा रही है, और वो क्या कहती है? कहा, अब जो आप हैं, मैंने तुझे सिद्ध नहीं पाया, और तुझे मजबूत होना है, और वो थोड़ी सी शक्ति जो तेरे पास बची है, अब उसकी सुनिए। उन्हें चेतावनी दी प्रकाशित वाक्य 3:3 में। फिर से आइए लेते हैं, ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पास है, बस कुछ मिनटों पहले। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फेरा, बस, नहीं तो स्मरण रख कि तू ऐसी भ्रष्टता से बाहर आया, समझे? और इधर देख, यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। और नीचे वो चिरागदान को हटाने जा रहा है। देखिए, इसलिए ये है, ये क्या है? कलीसिया का उजियाला। और वो ठीक उसी संस्थागत तंत्र में चली गई, पागान के अंधकार में, जिसमें से वो निकलकर आई, और आज तक वहीं पर है, उन निष्कपट हृदय लोगों के साथ, ये सोचते हुए कि यही सत्य है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंट कैथोलिकों पर हंसते हैं जब ये 6 में से 1 है और दूसरे आधा दर्जन। ठीक वचन के अनुसार मनुष्य की बुद्धि। अब ध्यान दें, ओह कैसे मैं से प्रेम करता हूँ, उसकी सुनिए। अब उन्हें चेतावनी देता है। अब हम आप पूरी रीति से सहमत हैं, आप में से प्रत्येक? अब यदि आप नहीं हैं तो मुझे प्रश्न लिखें कि वे पशु ठीक प्रत्येक युग में प्रमाणित हुए, जैसा कि बाइबल ने उन्हें यहाँ प्रमाणित किया, ठीक वही जो उन्होंने वहाँ किया। इतिहास दिखाता है कि उन्होंने क्या किया, हम ठीक यहाँ देखते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या किया। और यहाँ वे पशु, मैं इससे पहले कभी नहीं जानता था, मैं बस वहाँ बैठा हुआ था, मैं इसे चलते हुए देख सकता था, ठीक वैसे ही जैसे आप मुझे देख रहे हैं, समझे? और इसे ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल के साथ सही है, इसलिए आप कैसे कुछ करने जा रहे हैं सिवाय इसके कि कहें ये ठीक है। ध्यान दें, अब चौथा पशु जिसे मसीह विरोधी का मुकाबला करने के लिए भेजा गया, इस अंतिम पशु में, क्या आप तैयार हैं? वो अंतिम पशु जो भेजा गया, या अंतिम सामर्थ जो मसीह विरोधी के मुकाबले के लिए, जो परमेश्वर की शिक्षा के विरोध में थी, मसीह विरोधी एक उकाब था, समझे? चौथा जीवित पशु एक उकाब था। अब आप बस युगों का अध्ययन करें, वचनों का अध्ययन करें, क्या उकाब और बाइबल में अंतिम युग उकाब का युग है और परमेश्वर उकाब को अपने भविष्यवक्ताओं के समान दर्शाता है। समझे? ये अब ध्यान दें, अंतिम युग उकाब का युग एक सच्चे वचन को एक प्रकट करने वाला। समझे? इसके पहले कि परमेश्वर कार्रवाई पर आए, जैसा उसने नूह के दिनों में किया, उसने एक उकाब को भेजा। जब वो इसराइल को लाया और फिराउन की फौज जाने के लिए तैयार थी, उसने एक उकाब को भेजा। हर बार वो अंत में एक उकाब को भेजता है, इसके अंत में, और यहाँ वो फिर से उकाब को भेजता है। ये ठीक वचन के साथ है, इसलिए आप कैसे इसे कुछ बना सकते हैं? एक उकाब को भेजता है, क्यों? सच्चाई के प्रकट करने वाले को जो सारे युगों में गिरती रही। इसलिए कैसे इस संसार में बैल हो सका, या एक मनुष्य, या जो भी पशु सवारी कर रहा था, कैसे ये कभी प्रकट किया जा सकता था जब तक कि उकाब ना आए? उनका अपना स्थान था, वे धर्मी थे, पशु भेजे वैसे ही जैसे कोई भी था। वो सिंह जो कि मूल था, यही जहां मसीह विरोधी मुकाबले के लिए आया, तब उसने दूसरी सामर्थ को उठाया, उसने इसके मुकाबले के लिए सामर्थ को भेजा, तब उसने दूसरी सामर्थ को उठाया, उसने दूसरी सामर्थ इससे मिलने के लिए भेजा, और तब अंतिम सामर्थ वो उकाब को लेकर आया कि बालकों को वापस मूल विश्वास पर फिर से वापस लाए, उनके अपने पूर्वजों के उकाब युग। तब आप ध्यान दें, फिर और कोई पशु नहीं, बस कुल यही अंत है। अब यदि आप प्रकाशित वाक्य 10:1-7 को लेंगे, मैं इसका उल्लेख कर रहा था, स्मरण रखिए, अंतिम संदेशवाहक का युग। देखिए क्या होना था, परमेश्वर के सारे भेद प्रकट हो जाएंगे, उकाब। आमीन। अब आप देखते हैं, चार पशु जिन्होंने सवारी की, ये पूर्ण रूप से सही था, क्या आप ये विश्वास करते हैं? और अब यहाँ हर युग है, या प्रत्येक सामर्थ जिसने इसके पीछे से सवारी की, और वहाँ वचन है जो दर्शाता है कि शत्रु के सवार ने क्या किया, यही इन मोहरों में प्रकट किया जा रहा था। और अब ये भी प्रकट किया गया था कि हर पशु वो सामर्थ जो परमेश्वर ने भेजी कि इसका मुकाबला करे, बिल्कुल सही बिंदु पर चोट करता है, उकाब के समय तक। अब यदि ये अंत समय है, तो वहाँ एक उकाब आएगा ठीक इस पर। अब स्मरण रखें, अब इन दिनों में जब सिंह आता है, वो मूल वचन उनमें से 100 ने सिंह को सुना। उन दिनों में जब बैल आया, बिल्कुल थोड़े से बूंद भर लोगों ने बैल का संदेश सुना। उन दिनों में जब वो मनुष्य आया, उसने मनुष्यों के बीच कार्य किया। आप देखिए, वो चतुर था, उसने एक छोटा झुंड बाहर कर लिया, और उन्होंने क्या किया, शैतान ने ये देखा, इसलिए उसने उन्हें सीधा वापस किया और उनका इसमें विवाह कर दिया। और स्मरण रखें, जब अंत में उकाब आता है, तो ये 1% का 1/100 भाग जो इसे सुनेगा, ये उकाब युग है। स्मरण रखें, ये कुल मिलाकर दूसरे सवार हैं। और तब यहाँ तक कि यीशु ने भविष्यवाणी करी, यदि वो अपना आगमन जल्द नहीं करता, तो फिर उठा लिए जाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं बचता। क्या ये वचन है? आप देखिए कि हम कहाँ पर हैं, भाई और बहन, क्या आप नहीं देखते? देखिए हम कहाँ पर हैं। परमेश्वर, मैं बहुत ही आनंदित हूँ, मैं नहीं जानता कि क्या करूँ, ये मैं नहीं जो यहाँ पर खड़ा हूँ कि बात करूँ, मैं भी यहाँ हूँ, मैं आप लोगों के बीच में हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा परिवार है, मेरे भाई और बहन जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, और स्वर्ग का परमेश्वर इतना दयालु कि नीचे उतर आया और चीजों को प्रकट किया अपने आप दर्शनों के द्वारा, जो कि 30 से प्रमाणित हैं कि ये सत्य है। हम यहाँ हैं, हम पहुँच चुके हैं, बस यही है। वैज्ञानिक खोज ने ये सिद्ध कर दिया है, वचन के प्रमाण ने इसे सिद्ध कर दिया है, और हम यहाँ हैं, और ये प्रकाशन परमेश्वर की ओर से आया है, और ये सत्य है। क्या आपने किसी चीज को पकड़ा? मुझे आश्चर्य हुआ यदि आप थे, समझे? जी हाँ श्रीमान, तो मैं आपको रविवार को नहीं बता सकता था। ध्यान दें, ये शानदार। अब अब ध्यान दें अब, और तब उस समय के अनुसार जो परमेश्वर डूबने वाले संसार को देने को था उसने उकाब को भेजा, और वो समय जब वो इज़राइल को छुड़ाने वाला था उसने उकाब को भेजा। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो समय यहाँ तक कि यूहन्ना पतमस टापू पर था कि ये संदेश इतना सिद्ध था कि वो स्वर्गदूत के साथ इसका विश्वास नहीं कर सका? आप जानते हैं एक दूत एक संदेशवाहक है, परंतु क्या आप जानते हैं कि संदेशवाहक एक भविष्यद्वक्ता था? आप इसका विश्वास करते हैं? आइए इसे सिद्ध करें। प्रकाशित वाक्य 22, आइए देखें यदि ये एक उकाब था। जी हाँ, देखिए वो एक था, निश्चय ही वो एक दूत था, वो एक संदेशवाहक है, परंतु वो एक भविष्यद्वक्ता था जिसने ये प्रकाशित वाक्य की सारी पुस्तक उस पर प्रकट कर दी। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और 19वां पद, मैं विश्वास करता हूँ ये सही है यदि मैंने इसे यहाँ लिख रखा है। 22:19, हो सकता है मैं गलत हूँ, नहीं 22:9 यही जो है, मैं 22:9 को देख रहा था, ये ठीक है, ओ हाँ ये है। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ता हूँ और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। देखिए यहाँ यूहन्ना ने क्या देखा, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। अब वो बंद कर रहा है, ये अंतिम अध्याय है। जब मैंने सुना और देखा तो जो दूत मुझे ये बातें दिखाता था मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, और वो तब वो दूत, देखिए तब उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, कोई भी सच्चा भविष्यद्वक्ता दंडवत नहीं करेगा या संदेशवाहक किसी भी प्रकार। देखिए ये केवल परमेश्वर के लिए है। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर को ही दंडवत कर, समझे? अब पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है कि ये परमेश्वर का वचन है, अब ध्यान दें। और जब परमेश्वर का वचन सामने लाया गया तो इसे भविष्यद्वक्ता के द्वारा ही सामने लाया जाना है, क्योंकि यही वो जिसके पास परमेश्वर का वचन आता है। इस पर मैं एक प्रश्न की आशा कर रहा था यहाँ इस बॉक्स में, मैंने सोचा मैं इसे यहीं थोड़ा सा निपटा दूँ। आप जानते हैं मैंने जरा अनुभव किया कि उसमें एक इस प्रकार का है, बस यही है, मैंने जरा सोचा मैं इसे लूंगा। आप देखिए, समझे, परमेश्वर का हर वचन लाया गया, बाइबल तरीके को नहीं बदलती, बिल्कुल नहीं। देखिए ये वही चीज है, ये इसी भविष्यद्वक्ता के पास ही आना है जिसके पहुंचने की हम आशा कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 10:1-7। अब आइए 9वें पद को हम फिर से पढ़ें। अब हम लेते हैं, हम अब इसके पहले कि हम इस पद पर जाएं, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप सही सिद्ध देखते हैं इसके पहले कि हम इन मोहरों को छोड़ें? अब याद रखें, उकाब के बाद फिर कोई और सामर्थ नहीं आती है। देखिए और नहीं, हर बार मसीह विरोधी कुछ भेजता है, परमेश्वर एक सामर्थ भेजता है। मसीह विरोधी दूसरी सामर्थ भेजता है, परमेश्वर उसका मुकाबला करने के लिए कुछ भेजता है। तब वो दूसरी सामर्थ भेजता है, परमेश्वर इसके मुकाबले के लिए दूसरी सामर्थ भेजता है, समझे? और तब जब ये उकाब पर आता है जो कि उसका वचन है, ऐसा लगता है कि ये अपने पहले वाले स्थान पर है। अब ध्यान दें कि ये भविष्यद्वक्ता नहीं कि जिसके आने की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई मनुष्य जो एलिया के आत्मा के समान अभिषिक्त है, निसंदेह ये एलिया नहीं होगा, परंतु ये मनुष्य उसके समान होगा, आएगा और उसकी सेवकाई जो भेजी गई कि इन गिरे हुए लोगों को वापस लाए, इन नामधारियों के भटकावों से वापस पूर्वजों के मूल विश्वास पर। अब यदि ये बाइबल को एक साथ नहीं मिलाता, मैं नहीं जानता कि क्या करता है। मैं इस विषय में और अधिक नहीं कह सकता, क्योंकि ये यही है। आप बस पहुंचते हैं, ये सत्य है, आप वहां से कुछ लेते हैं, आप इसे घुमाते हैं, समझे? इसलिए ये इसे उसी प्रकार से होना चाहिए। अब ध्यान दें, अब 9वें पद में प्राण जो वेदी के नीचे हैं, अब यही जहां उन असहमतियों को लेने जा रहा हूं, परंतु बस एक मिनट के लिए ध्यान दें और जरा समझें। मैंने भी यही सोचा, परंतु ये उस प्रकार से नहीं आया हमारे पास। मैंने सदा से यही सोचा कि वे प्राण जो वेदी के नीचे हैं, ये आरंभिक कलीसिया के हैं, और मैं निश्चित हूँ कि डॉक्टर उरिया स्मिथ और हर कोई उनमें कहता है यही है, समझे। परंतु मैंने अपने आप में सोचा, परंतु जब पवित्र आत्मा ने इसका दर्शन दिखाया, ये नहीं था, वे ये प्राण नहीं हैं। अब आप कहते हैं, अच्छा अब मैं इसके विषय में नहीं जानता। अच्छा अब एक मिनट, हम ढूंढेंगे। देखिए, ये प्राण उस दुल्हन कलीसिया के प्राण नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। हमने सोचा ये दुल्हन कलीसिया वहाँ वेदी के नीचे प्रतीक्षा कर रही है। आप देखिए, चिल्ला रही है, कितनी देर और प्रभु, कितनी देर और। अब मैं इसे फिर से पढ़ दूं ताकि हम इसे सही ले सकें। जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। देखिए, परमेश्वर का वचन और गवाही जो उनकी है, अब वहाँ से न हिले। बस एक मिनट, देखिए, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। अब क्योंकि वे इस समय, यदि आप ध्यान दें, ये पांचवी मोहर खोल दी गई। देखिए, कलीसिया जा चुकी है, ये वे प्राण प्रारंभिक कलीसिया के अधीन नहीं हो सकते। अब कृपया, यदि आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया हो, क्योंकि ये एक महान मतभेद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने, और आपके पास अपने कागज हैं और लिखने के लिए सामग्री। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। अब ये वे प्राण नहीं हो सकते क्योंकि धर्मियों के प्राण शहीद हुए और धर्मी लोग, कलीसिया, दुल्हन उठा ली गई है, इसलिए वे वेदी के नीचे नहीं होंगे, वे महिमा में होंगे दुल्हन के साथ। अब ध्यान दें, क्योंकि वे रैप्चर में चले गए हैं, प्रकाशित वाक्य के चौथे अध्याय में वे उठा लिए गए। अब तो फिर वे प्राण कौन हैं? ये अगली बात है, वे कौन हैं फिर, यदि वे आरंभिक कलीसिया नहीं हैं? ये इज़राइल है जिसे राष्ट्र के समान बचाया जाना है, वे सारे के सारे पहले से ठहराए हुए हैं। ये इज़राइल है, ये इज़राइल है स्वयं। आप कहते हैं, ओ एक मिनट रुकिए, आप कहते हैं वे नहीं हो सकते, ओ हाँ वे बचाए जाने हैं। यहाँ हम इसे तय करें, एक मिनट, मेरे पास चार या पांच पवित्र लेख हैं, मैं एक लूंगा। एक मिनट के लिए हम रोमियों को लें और ढूंढें यदि वे हैं। आइए रोमियों की पुस्तक लें और 11वें अध्याय पर चलें और हम पाएंगे थोड़ा। आइए हम इसे पढ़ें और फिर हम इसे स्वयं ही लेंगे। रोमियों 11वां अध्याय 25वां और 26वां पद। अब यहाँ पौलुस की सुने, और पौलुस ने कहा, यदि कोई भी, यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी, कोई और सुसमाचार प्रचार करे, क्या उसे श्रापित होना था? ध्यान दें। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, आप यही हैं, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा। अंतिम अन्य जाति की दुल्हन को अंदर लाना है, दुल्हन के लिए इज़राइल पर अंधापन इसी उद्देश्य के लिए आया है। और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसे लिखा है, छुड़ाने वाला सय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। ठीक, अब वे इज़राइली हैं जो इस वेदी के नीचे हैं। ध्यान दें, इज़राइल विशेष उद्देश्य के लिए अंधे किए गए कि हम बचाए जाएं। आप इसका विश्वास करते हैं? अब किसने इन्हें अंधा किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अपने बालकों को अंधा कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं, यीशु वहाँ क्रूस पर खड़ा और वे यहूदी उसके लहू के लिए चिल्ला रहे हैं, वे उसके अपने बालक, और वो वचन था, वो स्वयं में वचन था। और यहाँ वो ये जान रहा था कि वे लोग उसे आनंद के साथ स्वीकार कर लेंगे, और इसी कारण उसने उन्हें अंधा कर दिया। इसलिए वे उसे नहीं पहचानेंगे। वो इतने नम्र मार्ग से आता है और इसके लिए अंधा कर देता है कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। समझे, वचन ने कहा वे ये करेंगे और उसने अंधा कर दिया था। यीशु ने उन्हें दयनीय बना दिया, यहाँ तक कि इतना जैसा कि उसने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। समझे, वे अंधे थे। पौलुस ने कहा वे किसी कारण से अंधे किए गए हमारे लिए। ध्यान दें, अब मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस पर ध्यान दें। उन्हें वस्त्र दिए गए, उनके पास नहीं थे, उन्हें वस्त्र दिए गए सफेद, उनमें से प्रत्येक को। अब संतों के पास पहले ही एक था, उन्हें यहाँ मिलता है, परंतु वहाँ उन्हें वस्त्र दिए गए और संतों के पास उनके पहले ही थे और वे चले गए। समझे, वे देखिए उनके पास अवसर नहीं था क्योंकि वे परमेश्वर के द्वारा अंधे किए गए। उनका अपना पिता, इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह पूरा हो ताकि दुल्हन अन्य जातियों में से ली जा सके। क्या ये ठीक बात है? मैं आपको यहाँ एक सुंदर प्रतीक यूसुफ में दिखाऊं। यूसुफ आत्मिक मनुष्य, उकाब, वो अपने भाइयों के बीच जन्मा जैसे कि वास्तविक कलीसिया दूसरों के बीच, और वो स्वप्नों का अर्थ बता सकता था और दर्शन देखता, और बाकियों ने उसे घृणा की। उसके पिता ने उससे प्रेम किया। ध्यान दें, तब वो बाहर था, अपने भाइयों के द्वारा निकाला हुआ, न कि अपने पिता के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा, और चांदी के लगभग 30 सिक्कों में बेचा गया, गड्ढे में फेंका गया और मरा हुआ मान लिया गया, निकाला गया और फिरौन के दाहिने हाथ बैठा। और क्योंकि वो अपने भाइयों द्वारा निकाला गया, देखिए उसे अन्य जाति की दुल्हन दी गई थी, न कि अपने लोगों में से। वहाँ उसके एप्रेम और मनशे जन्मे जो कि इज़राइल में मिलाए गए, जैसे इज़राइल ने उन्हें आशीषित किया अपने हाथों को बदलने के द्वारा, सबसे छोटे से सबसे बड़े को, आशीषों को यहूदियों से बदलने के द्वारा वापस, या यहूदी से अन्य जाति को। समझे, अपने हाथों को बदलने के द्वारा छोटे वाले पर, जो कि छोटी कलीसिया, अंदर आने को। माँ कलीसिया सूर्य में खड़ी की गई जिसने इस बालक को जन्माया, और ध्यान दें उसे लेने के लिए इज़राइल ने अपने हाथों को बदल दिया प्रतीक में, और यूसुफ, वे वही बालक, उनकी अन्य जाति की माँ, इज़राइल की दुल्हन वहाँ पीछे बदली गई पुराने कट्टर से मसीही मार्ग में, पवित्र आत्मा जिसने इज़राइल के हाथों को बदला। उसने कहा परमेश्वर ने मेरे हाथों को पलटा, उसका इससे कोई मतलब नहीं। ध्यान दें, तब यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा अस्वीकार किया गया, उसके अपने लोग, अन्य जाति की दुल्हन ली, ठीक वैसे ही जो यीशु ने किया, यहूदियों के द्वारा अस्वीकार किया गया, अन्य जाति की दुल्हन ले ली। आइए यहाँ से कुछ पढ़ते हैं, मैंने यहाँ वचन लिखे हुए हैं, प्रेरित 15, और ये एक प्रकार से जिसे कि हमें सिखाना है, जो भी हो, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पास ये सही है। पढ़िए प्रेरित 15:14, ठीक है, मैं आशा करता हूँ अब ये सही है। ठीक है, शिमोन ने घोषणा की कि कैसे परमेश्वर, नहीं आइए 13वें पद से आरंभ करें। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, अब आप देखते हैं क्या घटित हुआ था, वे अन्य जातियों के पास चले गए थे, समझे, और विवाद जारी था क्योंकि वे यहूदी थे, समझे। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो, शमाउन, ये शमाउन पतरस, उसने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जाति पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। ओह, देखिए मेरी पत्नी का नाम ब्रॉय था, जब मैंने इसे ले लिया वो एक ब्रणम थी। देखा, यीशु ने अपनी कलीसिया बाहर निकाली, या अपनी दुल्हन अन्य जाति में से, ये वचन है, प्रतीक, जैसे कि यूसुफ था। अब इस पर ध्यान दें, अब ये प्राण जो वेदी के नीचे हैं, भाई ये प्राण अब समझ रहे हैं, वे जो वेदी के नीचे हैं, क्यों वे पापी मनुष्य आइकमैन जैसे लोगों के द्वारा मारे गए, समझे, वे पकड़े हुए थे, उनमें करोड़ों, परंतु वे यहूदी बने रहे। अब स्मरण रखें, ये क्या था? वे परमेश्वर के वचन के कारण मारे गए, न कि मसीह की गवाही के कारण। क्या आप ये समझ गए? परंतु स्मरण रहे, कलीसिया भी अंदर आती है। कलीसिया के शहीद परमेश्वर के वचन के कारण और यीशु मसीह की गवाही के कारण। कितने ये बात जानते हैं यहाँ पर? जी हाँ, ठीक है। अब इनके पास यीशु मसीह की गवाही नहीं थी, परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी। यहूदी और हिटलर ने उनसे घृणा की, इसी प्रकार आइकमैन ने, इसी प्रकार स्टालिन ने की, बाकी बचे संसार ने, समझे। परंतु वे उसके प्रति सच्चे बने रहे जो उन्होंने विश्वास किया, और उन्होंने उन्हें मारा क्योंकि वे यहूदी थे। क्या आप जानते हैं कि मार्टिन लूथर का भी यही विचार था? ये सच्चाई है। उसने कहा सारे यहूदियों को बाहर निकाल देना चाहिए, ये लोग मसीह विरोधी हैं, समझे। परंतु वो बस एक दूसरे विधान में था और इसे देख नहीं पाया, वचन को नहीं देखा। अब वचन सत्य सामने आता है। कैसे आप कभी इज़राइल को अंधा करने जा रहे थे? आप ये नहीं कर सकते, नहीं। ओ, कैसे वो नबी वहाँ खड़ा हो सकता था उस दिन और कहता है तू एक श्रृंगी के समान दिखाई पड़ता है इसराइल, जब वे इसके खराब भाग को दिखाने का यत्न कर रहे थे। उसने कहा क्यों? उसने कहा जो कोई भी तुझे आशीष दे वह आशीषित होगा, और जो कोई भी तुझे श्राप दे श्रापित होगा। ये ठीक बात है। ओ मनुष्य, आप ये कैसे करने जा रहे हैं? एक बार उन्होंने सोचा परमेश्वर भूल जाएगा। जब भविष्यद्वक्ता ने अंधियारी चीज को यहूदियों के लिए आते देखा, वो मनुष्य वहाँ खड़ा हुआ है और परमेश्वर का वचन उस पर उंडेला गया। उसने कहा ओ प्रभु, क्या तू अपने लोगों को छोड़ने जा रहा है? उसने कहा वो क्या है जो तेरे पास पड़ा है? वो कहता है एक नापने की छड़ी। कहा आकाश कितना ऊंचा है? इसे नाप। ओ सागर कितना गहरा है? उसने कहा मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा ना ही मैं कर सकता हूँ, ना ही मैं इसराइल को कभी भूल सकता हूँ। नहीं श्रीमान, वो उसे भूलने वाला नहीं। उसे अपने बालकों को अंधा करना था। अब इस पर सोचें, अपने बालक को अंधा करना कि हमें अवसर दे और हम इसे अस्वीकार कर देते हैं। अब क्या ये आपको इस विषय में इतना छोटा अनुभव नहीं कराता है कि आप उस कंक्रीट खंड के नीचे उस बड़े टोप को लगाए रेंग रहे हैं और इसे कभी नहीं छू पाते? आप जानते हैं ये बहुत छोटा है। ओ प्रभु, जी हाँ, वे परमेश्वर के वचन के कारण पकड़े गए। वे यहूदी थे और उनके पास उनकी व्यवस्था थी, वे उसी पर टिके हुए थे। अब आपको पिछली रात्रि याद है, समझे, वे इसके साथ टिके थे और वे यहूदी थे। उनके पास व्यवस्था थी और व्यवस्था परमेश्वर का वचन थी, और वे ठीक इसके साथ बने हुए थे। ये ठीक बात है। और गवाही के कारण वे पकड़े गए, वे शहीद हुए थे, और यहाँ वे प्राण वेदी के नीचे हैं कलीसिया के जा चुकने के बाद। अब ध्यान दें, वे अपने अंधेपन में थे, अपने मसीहा को शहीद कर दिया, और अब वे इसका भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने इसको अनुभव किया, उन्होंने इसे पहचाना। जब ये बीत गया था तब उन्होंने उसे देखा जब वे परमेश्वर की वेदी के सामने आए, परंतु अब परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए है। अब ध्यान दें, वे नहीं हो सकते, वे किसी भी प्रकार से संत नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पहले ही वस्त्र दिया जा चुका था, परंतु ये यहाँ है अब। बस प्राण परमेश्वर के वचन के कारण वेदी के नीचे, और गवाही जो उनकी परमेश्वर के लोग होने के नाते थी यहूदी। परंतु अब ध्यान दें, परमेश्वर का अनुग्रह उनके पास आता है और यीशु उनमें से प्रत्येक को एक श्वेत वस्त्र देता है। ओ जरा ध्यान दें, वहाँ पर कलीसिया के चले जाने के बाद, क्योंकि वे अपने उद्देश्य के लिए ईमानदार थे और वे अंधे किए गए थे, और उन्हें ये नहीं मालूम कि वे ठीक अपना वो भाग पूरा कर रहे थे जो परमेश्वर ने उनके करने के लिए ठहराया था। और यहाँ यूहन्ना देखता है और प्राणों को वेदी के नीचे देखता है। अब ध्यान दें, वो उन प्राणों को देखता है। ध्यान दें, वो उन्हें क्या कहता है? वे चिल्लाए प्रभु और कितनी देर? ध्यान दें, बस थोड़ी देर और, समझे। आइए इसे लेते हैं। जैसा कि हम वचन में से होते हुए आगे बढ़ते हैं, वे अनुभव करते हैं कि उन्होंने अपने मसीहा की हत्या कर दी, समझे, और उन्हें ये नहीं मालूम, परंतु तब उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने हत्या की ताकि वापस इसका भुगतान करें। वहाँ गलत कर रहे हैं, और अब देखिए क्या चीज जो उन्हें करनी थी। देखिए, वे हत्या करने के दोषी थे, इसलिए उनकी हत्या की गई, समझे। वे चिल्ला उठे इसका लहू हम पर हो, समझे, ये ठीक बात है। और वे अंधे थे। अब यदि वे अंधे नहीं किए गए थे, परमेश्वर कहता उन्हें रहने दो, वे योग्य नहीं है, परंतु ये होते हुए वे परमेश्वर के द्वारा अंधे किए गए, उसका अनुग्रह उनके पास नीचे उतरा। आमीन। आश्चर्यजनक अनुग्रह के विषय में बात करते हैं और उनमें से प्रत्येक को वस्त्र देता है, क्योंकि सारा इजराइल बचाया जाएगा। प्रत्येक का अपना नाम लिखा हुआ है। ये ठीक बात है। यीशु ने उन्हें वस्त्र दिए जैसा यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया, एक प्रतीक। देखिए, जब यूसुफ वहाँ खड़ा हुआ और जब वो अंततः उसने अपने आप को वहाँ वेदी पर प्रकट किया, उसकी अपनी वेदी, उसके महल में उसका सिंहासन, उसने कहा हर कोई चला जाए। उसकी पत्नी वहाँ महल में थी जहाँ दुल्हन होगी, और उसने उनसे कहा, उसने कहा क्या तुम मुझे नहीं जानते? अरे, अब वो इब्रानी बोल रहा है, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, ओ प्रभु। उन्होंने कहा अब तू हमें पकड़ने जा रहा है। कहा एक मिनट रुको, परमेश्वर ने ये एक उद्देश्य के लिए किया है। तुमने मुझे फेंकना था कि जीवन बचे, महिमा हो। अब ठीक यही है। कहा अपने आप पर क्रोधित ना हो। याद करें, यूसुफ ने ये कहा कि अपने पर क्रोधित ना हो, अब सब ठीक है, ये सब समाप्त हो गया, परमेश्वर ने मुझे यहाँ तुम्हारे आगे आगे भेजा। अब जानते हैं कि बाइबल ने कहा कि वे उससे कहेंगे, जब वे उसे आते हुए देखते हैं, कहा कहते हैं कि तू मसीहा है, हम जानते हैं, परंतु इन दागों के विषय में क्या है, समझे? उसने कहा ये मुझे मेरे मित्रों के घर में लगे, मित्रों के। तब जब उन्होंने ये अनुभव किया, वे जो छूट गए थे 144,000, बाइबल ने कहा वे अपने आप को एक दूसरे घराने से अलग करेंगे और रोना और विलाप कई दिनों तक करते रहे, परस्पर इधर उधर चलते हैं, कहते हैं हमने ये कैसे कर दिया, क्यों हमने अपने मसीहा को क्रूस पर चढ़ा दिया। कहा घर में ऐसे रोए जैसे पहलौटों के लिए, कैसे हमने ये कर दिया। वे यहूदी, वे लोग संसार के सबसे अधिक धार्मिक लोग, परमेश्वर के चुने हुए, परंतु उसने इन्हें अंधा कर दिया कि हमें ले, और हमने इसको ठुकरा दिया। अन्य जाति की कलीसिया का क्या न्याय है? आप वही हैं, समझे? परमेश्वर के द्वारा उद्देश्य से अंधा किया गया ताकि वो हमें ले सके। यीशु के लिए एक दुल्हन, उन्हें उसमें लिया गया, समझे, और इसे पूर्व नमूना बनाया और सारी बातें। अब आप देखें, वे प्राण कौन हैं? वे शहीद हुए संत नहीं, वे तो चले गए। ये ठीक बात है, ध्यान दें, वे तो चले गए थे, समझे, इसलिए इन्हें वस्त्र दिए गए उनमें से प्रत्येक को। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, परंतु अब परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ। यीशु ने उन प्रत्येक को श्वेत वस्त्र दिया जैसे यूसुफ ने किया, उसका अनुग्रह उसके भाइयों पर। अब ध्यान दें, यद्यपि उन्होंने यूसुफ से पीछा छुड़ाना चाहा इसी तरह, परंतु उसका अनुग्रह उन पर हुआ, समझे। ओ ये ठीक बात है, तुम्हारा करने का ये अर्थ नहीं था, परंतु देखिए ये परमेश्वर ये कर रहा था, समझे। परमेश्वर ने तुम सबको ये करने दिया ताकि वो मुझे बाहर निकाल सके और मुझे यहाँ लेकर आए ताकि मैं लोगों का जीवन बचा सकूं, यहाँ इन अन्य जातियों का, जहाँ से मुझे अपनी पत्नी मिली। मेरे पास पत्नी नहीं होती यदि मैं वही टिका रहता। अब मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, उससे यहाँ मेरे पास ये बालक हैं। और कहा मैं अब तुम सबको लेने आ रहा हूँ, अब तुम सबके साथ ये भलाई भी है, मैं तुम्हें यहाँ लाने जा रहा हूँ, हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे, एक बड़े परिवार के समान, समझे। कहा मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा बूढ़ा पिता अब तक जीवित है? ओह, और उस पर ध्यान दें, उसने छोटे बिन्यामीन के साथ क्या किया जो 144,000 का प्रतीक है, जैसा कि हम इसे बाद में लेंगे। देखिए उसने क्या किया, वो सीधा जल्दी से बिन्यामीन की ओर दौड़ा, उसे अपने गले लगा लिया। उसका छोटा भाई परिवार में उसके चले जाने के बाद जन्मा था। देखिए, उसकी माँ के द्वारा पहली कलीसिया, ऑर्थोडॉक्स कलीसिया, 144,000 उसकी अनुपस्थिति में जन्मे, जबकि वो दूर अपनी अन्य जाति की दुल्हन लेने गया। ओह प्रभु, क्या ये आपको कुछ नहीं करता? ये यहाँ पर है, इसलिए आप देखते हैं कि वे कौन हैं, वे यहाँ पर हैं। अब ध्यान दें, यद्यपि उन्होंने यूसुफ से पीछा छुड़ाना चाहा, उसका अनुग्रह उन पर हुआ। यद्यपि उन्होंने यीशु से पीछा छुड़ाने का यत्न किया, वो अब फिर वापस लौट कर आया, क्योंकि वे अंधे थे, और उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया। वो उन्हें अपने घर ले जाने जा रहा है, जो भी है, इससे जरा भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ये कह दिया, मैं उन सबको बचा लूंगा जो भी है, समझे। अब 10वां पद ध्यान दें, उन्होंने पलटा लेने के लिए कहा, समझे। अब यदि ये दुल्हन थी तो ये स्तफनुस के समान थी, पिता इन्हें क्षमा कर, आप जानते हैं, समझे। परंतु ये यहूदी हैं जो हाल ही में अंदर आए हैं, वे पलटा लेने के लिए कहते हैं, फिर ध्यान दें, देखिए उसने फिर कहा, ध्यान दें ये नहीं, उसने कहा ये तेरे भाई हैं, ये यहूदी सैकड़ों। अब उन्होंने बदला चाहा, उन्होंने कहा ओ हम चाहते हैं कि तू हमारा बदला ले। उसने कहा बस थोड़ी देर और, अब थोड़ी देर और, क्योंकि ध्यान दें, मुझे यहाँ से पढ़ने दें, ये 10वें पद में है, ठीक है। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय नहीं करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, क्या, जब तक कि तुम्हारे संगी दास, समझे। अब ये क्या है, भविष्यद्वक्ता अब इसराइल को प्रचार कर रहे हैं, समझे। जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई भी जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, देखिए, जो ऐसा होने के लिए पहले से ठहराया गया है, आप समझे, तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। देखिए, दूसरे शब्दों में ये उनके लिए पहले से ठहराया गया, ये वचन है कि उन्हें ये करना ही है। अब थोड़ी देर विश्राम करो, अब तुम्हें तुम्हारे वस्त्र मिल गए हैं, तुम लोग घर जा रहे हो और थोड़ी देर बैठो, देखिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। अब ध्यान दें, तेरे भाइयों को अभी मारा जाना है, जिसका अर्थ 144,000 को अभी विपत्तियों में बुलाया जाना है, 144,000 जो बुलाए गए हैं। इच्छा थी कि समय होता, हम कल आने वाली रात्रि में ले सकते हैं यदि प्रभु ने चाहा, तो हम इसके पहले कि हम दूसरी मोहर पर आएं, समझे। अब इस पर भी ध्यान दें, इन्हें भी मसीह विरोधी के द्वारा शहीद होना है, हमने हाल ही में लिया है। और ध्यान दें, उसकी अंतिम सवारी में जब वो वहाँ यहूदियों के साथ अपनी वाचा तोड़ देता है और वहाँ वो जाती है, समझे। ये यहूदी 144,000 प्रकाशित वाक्य 11 के दो गवाहों के द्वारा बुलाए गए। अब आपको स्मरण है कि उन्हें भविष्यवाणी करनी है, आपने ये पढ़ लिया है, आप में से कितनों ने ये पढ़ा है, निश्चय ही हम सबको मालूम है, वचन पढ़ रहे हैं। अब वे भविष्यवाणी करते हैं, ये दो गवाह भविष्यवाणी करते हैं डेनियल के समय में 70वें सप्ताह के अगले आधे सप्ताह में, ये अंतिम 3.5 वर्ष हैं। स्मरण रहे हमने कैसे डेनियल के 70 सप्ताह लिए थे, मैंने कहा हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी जब हम इसको यहाँ लेते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि क्यों, परंतु मैं बस किसी चीज ने मुझसे कहा हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और हम यहाँ पर हैं, जी हाँ, समझे। ध्यान दें, डेनियल के समय में, अब स्मरण रखें, डेनियल को ये बताया गया कि मसीहा आएगा, राजकुमार बल्कि मसीहा, और वो भविष्यवाणी करेगा। इसराइल के पास तब भी 70 सप्ताह बचे हुए थे और 70 सप्ताहों के आधे में मसीह काटा जाएगा और प्रतिदिन का बलिदान हटा दिया जाएगा, क्या ये ठीक बात है, परंतु वहाँ अब भी 3.5 सप्ताह ठाने हुए हैं। इस वाले भाग में वो अन्य जाति दुल्हन लेता है, अब वो ऊपर जाती है, और जब वो ऊपर जाती है तो भविष्यद्वक्ता इसराइल में उठ खड़े होते हैं, समझे, और वे प्राण जो शहीद हुए थे अब यहाँ से होते हुए, वास्तविक सच्चे यहूदी यहाँ से होते हुए, जिनके नाम पुस्तक में हैं, जिन्होंने सही जीवन जिया और सही कार्य किए, यहूदी मत में बिल्कुल ठीक ठीक जीवन बिताया, उन लोगों को आइकमैन आदि के द्वारा शहीद किया गया था। ईमानदार लोग, वहाँ पर लाखों लोग, और उन जर्मनियों ने गोली से मार डाला और उनकी हत्या की और उन्हें मार डाला और उन्हें बाढ़ के तारों पर लटका दिया और उन्हें जलाया और भस्म कर दिया और सब कुछ, वो लहू रहित या खूनी हृदय भूखा हिटलर और स्टालिन और मुसोलिनी और वे सारे लोग जिन्होंने यहूदियों से घृणा की, मैं सोचता हूँ ये एक बात है जो राष्ट्रों को एक साथ थामे हुए है, क्योंकि उन्होंने सदा यहूदियों का सम्मान किया, ये ठीक बात है, उसे एक स्थान दिया। आप यहूदियों का सम्मान करते हैं और परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। अब वहाँ यहूदियों का एक झुंड जो स्वधर्म त्यागी है, जैसे कि अन्य जाति वैसे ही, परंतु वास्तविक यहूदी, परमेश्वर ने उसका नाम पृथ्वी के रचने से पहले पुस्तक में लिखा है, और यहाँ वो इस समय में मार डाला गया। और याद करें, अब इस पर सोचें, ये कितना सिद्ध है, उन लाखों यहूदियों को मार डाले जाने के बाद निर्दोष लोग संसार के राष्ट्रों के द्वारा, यहाँ पर वचन कहता है ठीक इस समय में उनमें से प्रत्येक वेदी के नीचे है, अनुभव करें क्या घटित हुआ, और उन्हें श्वेत वस्त्र दिए गए और उन्होंने कहा भाई क्यों, क्या हम ठीक अभी राज्य में वापस जा सकते हैं, यहूदी राज्य को पृथ्वी पर स्थापित होना है, आप जानते हैं यहूदा ने कहा वहाँ एक राज्य था, देखिए कि स्थापित किया जाए, अब ये सुसमाचार का राज्य है, आप देखिए। परंतु यहूदियों का राज्य इन दो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रचार किया जाएगा, इसलिए ध्यान दें, पृथ्वी का राज्य यहाँ है। स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया गया है यहूदियों के द्वारा, या मेरा अर्थ अन्य जाति को। यहाँ का राज्य पृथ्वी पर है, इसे पृथ्वी पर सहस्र शताब्दी में स्थापित होना है, सहस्र शताब्दी के पश्चात यहूदियों को। अब ध्यान दें, अब वे इस पर ध्यान दें, यहाँ जबकि वे प्रचार कर रहे हैं, देखिए, इसके पहले कि ये भविष्यद्वक्ता दृश्य में आए, ये यहूदी आइकमैन और उनकी अधीनता में मारे गए। उनमें से प्रत्येक ठहराया गया था, उन्हें श्वेत वस्त्र अनुग्रह में दिया गया, प्रत्येक को श्वेत वस्त्र दिया गया था। ध्यान दें, अब क्या हुआ, जैसे ही ये घटित हुआ, मैं वहाँ उस घड़ी को देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हमें देर हो रही है, परंतु मैं नहीं चाहता। देखिए, मैं वे उन बेचारे लोगों पर ध्यान दे रहा हूँ जो वहाँ खड़े हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे भाइयों। मैं आशा करता हूँ कि उस दिन आप में से प्रत्येक को श्वेत वस्त्र दिया गया है। देखिए, खड़े हुए अपने पैरों को आगे पीछे बदल रहे हैं, दुखते पैरों के साथ। आप में से बहुतों ने पूरे दिन काम किया है, मैं जानता हूँ कि ये क्या होता है। और इधर देखिए, मैं कुछ बेचारी बूढ़ी महिलाएं खड़ी हैं। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अपनी जगह इन महिलाओं को दे दी, और मैं और किसी ने बेचारी माँ को बच्चे के साथ है दे दी। मैं ये सब देखता हूँ, और मैं निश्चित हूँ वो देखता है। ध्यान दें, परंतु आप लोगों को बहुत देर तक रोके नहीं रखना चाहता, यदि मैं आप तक ये संदेश पहुंचा सकूं, बस यही चाहता हूं कि आप कर लें। अब इन यहूदियों पर ध्यान दें, मुझे ये करना है ताकि आप इस मोहर के प्रकाशन को देख सकें, देखें कि ये क्या है, ये प्राण जो वेदी के नीचे हैं, और वे कौन हैं। अब ध्यान दें, डेनियल के समय में 70वें सप्ताह के अगले दूसरे भाग में, अब याद रखें, मसीह को काटा जाना है बीच में, ये बीच है भाई, ये 7 का आधा क्या है, 3.5। मसीह ने कितने समय प्रचार किया, ये ठीक बात है। अब वहाँ अब भी लोगों के लिए ठाना हुआ है, क्या और 3.5 वर्ष, ठीक है। इस समय के चलते क्यों, देखिए क्या घटित हुआ, अन्य जाति दुल्हन 7 कलीसिया कालों में चुनी गई और ऊपर चली गई। और जब ये इस प्रकार से होता है, सारे यहूदी जो इस समय शहीद हुए अपने अंधेपन के कारण, वहाँ वेदी के नीचे हैं। परमेश्वर आकर कहता है, आप देखते हैं ये क्या था, अब मैं तुम में से प्रत्येक को एक वस्त्र देता हूँ। उन्होंने कहा, प्रभु और कितनी देर, क्या अब हम इसमें जा रहे हैं। कहा, नहीं 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 नहीं, तुम्हारे संगी साथी यहूदियों को थोड़ा दुख उठाना है, अभी उन्हें भी शहीद होना है जैसे तुम हुए थे। वो पशु उनको लेने जा रहा है जब वो अपनी वाचा तोड़ेगा। अब ध्यान दें, एक बार और ध्यान दें, अब बस याद रखें, ये भविष्यद्वक्ता प्रकाशित वाक्य 11 के अनुसार भविष्यवाणी करते हैं। आपने अपने हाथों को उठाया है, आपने ये पढ़ा है, समझे, और उन्हें सामर्थ्य दी गई, और हम ये मालूम करने जा रहे हैं कि वे कौन हैं। बस एक मिनट, प्रभु ने चाहा, अब ध्यान दें, ये भविष्यद्वक्ता कौन है, और अब बाइबल यहाँ ये बताती है, निश्चय ही वो करता है, समझे। अब ध्यान दें, 3.5 सप्ताह के बीच में अब कि वे वहाँ भविष्यवाणी कर रहे हैं, और प्रकाशन ने यहाँ कहा, और वे उन्होंने 1340 दिनों भविष्यवाणी की। यदि अब साधारण यहूदी कैलेंडर, परमेश्वर के कैलेंडर का साधारण समय ठीक 30 दिन एक महीने में रोमी कैलेंडर में मिला जुला है, नियमित कैलेंडर एक महीने में 30 दिन। अब यदि आप 30 दिनों को लेना चाहते हैं और 3.5 वर्षों को जोड़ लें और 30 दिनों को देखें, और ठीक है, आपको क्या मिलता है, 1300 और या 260 दिन, 1260 दिन, 60 दिनों, ठीक 3.5 वर्ष। अब आप देखते हैं इसमें कोई गलती नहीं है, ये यहाँ पर है, बिल्कुल ठीक एक दूसरे में ठीक बैठता है। ध्यान दें, उन दो भविष्यद्वक्ताओं ने 3.5 वर्षों तक प्रचार किया यहूदियों को, इसमें बाहर बुलाया 144,000 को। और फिर ध्यान दें, ये दो भविष्यद्वक्ता ठीक मूसा और एलिया हैं, समझे समझे। अब देखिए देखिए उनके उनकी सेवकाई को देखें। अब ध्यान दें कि ये दो भविष्यद्वक्ता क्या करते हैं, उनके पास सामर्थ्य है कि पृथ्वी पर मरी लाएं, जैसा भी वे चाहें। ये किसने किया, मूसा ने। उनके पास सामर्थ्य है कि आकाश को बंद कर दें और उनकी सेवकाई के दिनों में वर्षा ना हो 3.5 वर्ष के लिए। किसने आकाश बंद किया, वे वहाँ हैं, यही वे हैं। देखिए, ये देखिए, मनुष्य जब वो मरता है वो अपनी प्रतिष्ठा नहीं बदलता, वो अपना रूप नहीं बदलता। देखिए, जब पहले जब शाऊल पिछड़ गया था और देश में कोई भविष्यता नहीं था, वो नहीं समझ सका कि क्या करे। वो इसके विरोध में था, वो युद्ध पर जा रहा था, वो इंदौर की जादूगरनी के पास गया। अब बैलों और बकरियों का लहू, वो ये कर सकती थी। और उसने शमूएल की आत्मा को बुलाया, और जब शमूएल ऊपर आया, वहाँ वो भविष्यद्वक्ता के वस्त्रों में खड़ा हुआ। केवल यही नहीं, परंतु वो अब भी भविष्यद्वक्ता था। कहा, तूने मुझे मेरे विश्राम से क्यों बुलाया? देखिए, उसने कहा, देखते हुए तू परमेश्वर का शत्रु बन गया। उसने कहा, कल रात्रि इसी समय तू लड़ाई में मारा जाएगा, और कल रात इस समय तू मेरे साथ होगा। ठीक यही जो हुआ, समझे? केवल ये नहीं, वो अब भी भविष्यद्वक्ता है, समझे? और ये लोग अब भी भविष्यद्वक्ता हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी और गहराई में जाएंगे, अभी कुछ मिनटों में, प्रभु ने चाहा तो, समझे? ओ प्रभु, मैं कितना इस वचन से प्रेम करता हूँ। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा, हर वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ये दोनों भविष्यद्वक्ता मूसा और एलिया हैं। उनके कामों के नमूने से नमूना दिखाने के द्वारा उनकी सदा से यही सेवकाई रही। अब ध्यान दें, जैसा कि उन्होंने किया, इसने इन्हें नहीं बदला। याद रहे, ये लोग कभी नहीं मरे। एक मिनट के लिए ध्यान दें। अब घबराएं नहीं, इसके पहले इससे आगे बढ़े, भ्रमित ना हो। एलिया की पांचवी बार की सेवकाई उसकी चौथी बार की सेवकाई के साथ, मैं आपको बताता रहा हूँ, अन्य जाति कलीसिया एलिया की राह देख रही है, ठीक है? और यहाँ ये यहूदी के साथ है, याद रखें, वो चार में नहीं आ सकता, ये शत्रु का अंक है, उसे पांच होना है। पहली में वो आता है, वो स्वयं में एलिया है। अगली बार वो आता है, वो एलिशा था। अगली बार वो आता है, वो क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अगली बार वो आता है सातवें दूत के लिए, और पांचवी बार वो आता है मूसा के साथ है, वहाँ पर इन्हें प्रचार कर रहा है। निश्चय ही, जी हाँ श्रीमान, इससे परेशान ना हो। ओ पांच, यदि आप अपनी बाइबल के अंकों को जानते हो, पांच परिश्रम अनुग्रह का अंक है, और यही जो उसने किया। अब ध्यान दें, आप जानना चाहते हैं कि ये कहाँ है? क्या यीशु परिश्रम का अनुग्रह था? JESUS 5 LABOR परिश्रम, क्या ये ठीक है? लेबर आपके लिए प्रेम परिश्रम। और यदि आप उसके पास जाएं, आप कैसे आते हैं? किसके द्वारा? FAITH इन LABOR लेबर, क्या ये ठीक बात है? लेबर मजदूरी अनुग्रह का अंक है, ठीक है, विश्वासियों के लिए। ध्यान दें, पहला एलिया वो था, दूसरा एलिशा था, और तीसरा यूहन्ना था, चौथा सातवां दूत था, या कलीसिया के लिए अंतिम संदेशवाहक, मलाकी चार के अनुसार और प्रकाशित वाक्य 10:7। अब पांचवी बार वो यहूदियों के लिए संदेशवाहक, 144,000 के लिए यहूदियों को कलीसिया के चले जाने के बाद। मैं थोड़ा सा अजीब सा अनुभव कर रहा हूँ। देखिए, यदि कोई सोचता है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, यदि कोई अब भी सोचता है मलाकी चार वापस लाने को लोगों को, वही बात है, वो ये वहाँ यहूदियों के लिए करता है और सोचता है ये सब एक ही बात है। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूँ, एक मिनट, देखिए, ये थोड़ा सा चकरा देने वाला होगा, क्योंकि इसमें रखें, मलाकी चार में कहता है पूर्वजों का विश्वास वापस लाना, या बालकों का वापस पूर्वजों पर। देखिए, वापस पूर्वजों पर। अब मैं आपको सेवकाई का अंतर दिखाऊं। यदि वो बालकों का विश्वास वापस पूर्वजों पर लाने को आता है, वो मसीह का इनकार करेगा, वो वापस व्यवस्था पर जाएगा। ये ठीक बात है, पूर्वजों ने व्यवस्था का पालन किया, आप समझे इसे? ध्यान दें, जब एलिशा, जब वो अपनी सेवकाई मलाकी चार में पूरी करने आता है, देखिए, जैसे मलाकी चार एलिया अपने से ही था, परंतु जब वो यहूदियों की सेवकाई के लिए आता है, प्रकाशित वाक्य 11 का, उसके साथ मूसा था, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, जरा भी नहीं, समझे? समझ आया? जब मलाकी चार का एलिशा आता है, वो स्वयं में है, एलिया दौड़ेगा, ना कि एलिया और मूसा, एलिया उठेगा। परंतु वही प्रेरणा कि एलिया ने कहा कि वो कलीसियाई युग के अंतिम भाग में आएगा, कि बालकों का विश्वास वापस मूल विश्वास जो पूर्वजों का था ले आएगा, प्रेरितों का विश्वास जिस पर आपको वापस जाना है, और मसीह विरोधी ने उनको बाहर की ओर खींचा कि वापस लौट आए, जैसा सारा बाकी पवित्र वचन आपस में मेल खाता है। देखिए, वो अपने से ही आता है, समझे? परंतु जब वो कलीसिया में आता है, बाइबल या 144,000 के पास आता है, तो बाइबल स्पष्ट कहती है कि वे दोनों वहाँ, वे दो हैं, न कि एक, वे दोनों। और उसकी पहली सेवकाई यहूदियों को ना ले सकी और उन्हें वापस व्यवस्था पे लाए, वो हो गया, क्योंकि वो मसीह को 144,000 को प्रचार करने आया। आमीन। वहाँ वो मसीह था जो काटा गया था। आमीन। यही है, इसलिए चकराए ना, ये उलझन वाला नहीं है, वचन झूठ नहीं बोलता, जरा भी नहीं। महिमा हो। ओ, जब मैंने ये देखा, मैं कूद रहा था, मैंने कहा धन्यवाद प्रभु, जब मैंने इसे घटित होते तो देखा, एलिया को उस पहले युग में बाहर आते देखा स्वयं से, और वो अपने ही द्वारा आया था। तब जब मैंने उसे फिर से आते देखा वहाँ कहीं, और वो वहाँ दो थे जब ये घटित हुआ, कहा ये यहाँ पर है, ये वो करता है प्रभु। आमीन। अब मैं इसे देखता हूँ, हालेलुया, बिल्कुल ठीक है। यदि मैंने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो ये किसी को थोड़ा सा परेशान करने वाला होता, परंतु उसने मुझे इसका उल्लेख करने को कहा, इसलिए मैंने किया। ध्यान दें, ये मनुष्य परमेश्वर के द्वारा जीवित रखे गए उनकी मूल सेवकाई से, भविष्य की सेवकाई के लिए इन्होंने इतनी अच्छी सेवा की, समझे? जरा सोचे, वो एलिया का आत्मा 5 बार सेवा करता है, मूसा 2, क्या आगे के लिए जीवित रखा भविष्य की सेवा के लिए। उनमें से एक भी नहीं मरा। अब क्या आप ये विश्वास नहीं करते? वे दोनों जीवित देखे गए, रूपांतरण वाले पर्वत पर यीशु से बातें कर रहे थे, परंतु स्मरण रखें, उन्हें मरना चाहिए। अब मूसा वास्तव में मरा, परंतु वो जी उठा क्योंकि वो मसीह का सिद्ध प्रतीक था, समझे? कोई भी कभी नहीं जान सका कि उसे कहाँ गाड़ा गया था। स्वर्गदूतों ने आकर उसे ले लिया, समझे? स्वर्गदूत उसका कफन दफन करने वाले थे। ओह, क्यों? कोई भी मरणहार उसे वहाँ नहीं ले जा सकता था जहाँ वो जा रहा था। वो बस एक व्यवहार से होकर निकला, बस यही है। उसके पास स्वर्गदूत थे, कफन रखने वाले। देखिए, वे उसे वहाँ ले गए जहाँ उसे होना था। कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि शैतान भी उसे भी नहीं मालूम। उसने प्रधान दूत से विवाद किया, ये ठीक बात है। वो नहीं समझ सका कि मूसा को क्या हुआ। मैंने उसे वहाँ थरथराते हुए देखा था, और उस देश को देख रहा था, और पलटकर बालकों को देख रहा था, और आदि आदि। मैंने उसे थरथराते हुए देखा, परंतु उसने चट्टान पर पैर रखा, और वो अंतिम बार थी कि मैंने उसे देखा। वही चट्टान, वही चट्टान। मुझे उस चट्टान पर खड़ा हो जाने दो, मेरी मार्ग में, अंत में। जी हाँ श्रीमान। अब मेरे अश्वेत भाई लोगों आया करते थे, वो छोटा गीत गाते, यदि मैं सका निश्चय ही मैं उस चट्टान पर खड़ा होऊंगा जहाँ मूसा खड़ा हुआ। जी हाँ श्रीमान, ओ वही चट्टान जिस पर मैं कभी खड़ा होना चाहता हूँ, विश्वास से मैं वहाँ खड़ा होता हूँ। परंतु स्मरण रखें, एलिया वो बस थक गया था, क्योंकि उसके आगे बहुत काम था, इसलिए वो बहुत थका हुआ था, और परमेश्वर ने घर बुलाने की सवारी भेजी, ये ठीक बात है, एक रथ भेजा, क्या ये ठीक बात है? उसे ऊपर उठा लिया, वो कभी नहीं मरा, क्योंकि उसने उसे जीवित रखा। उसके पास भविष्य के लिए काम था, उसे एक मनुष्य का भी अभिषेक करने दें, देखिए कि उसकी आत्मा में आए, परंतु उन्हें मृत्यु का स्वाद चखना चाहिए। अब प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय, अब आइए हम चलें, जो भी है मैं ठीक यहाँ पर हूँ, चलिए इस पर ध्यान करते हैं। प्रकाशित वाक्य 11, ध्यान दें और देखें, यदि ये दोनों नहीं मारे गए, जी हाँ श्रीमान, उन दोनों को मृत्यु को चखना है, जी हाँ श्रीमान, उनकी सेवकाई के समाप्त हो जाने के बाद। प्रकाशित वाक्य 11, आइए 7 से आरंभ करें। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर, ओ प्रभु, वो खड़ा नहीं हो सकता, वे पवित्र शोर करने वाले फिर वापस आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। अथाह कुंड से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। परंतु ध्यान दें कि क्या होता है, वे अब पक्के प्रतीक हैं, और उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सादोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, यरूशलम। देखिए, अब इन्हें मृत्यु को चखना है, क्या नहीं? ये ठीक बात है, उनकी सेवकाई के समाप्त हो जाने के बाद। क्यों? सातवें दूत की सेवकाई, सातवें दूत की सेवकाई एलिया की सेवकाई सातवें दूत को नहीं, क्यों नहीं वे, बल्कि क्यों नहीं सके? मैं कहने का यत्न कर रहा हूँ, सातवें दूत की सेवकाई तो फिर मूसा के द्वारा, यदि वो अमरणहार है, वैसे ही जैसे एलिया के द्वारा हो सकी, क्यों नहीं वे? क्यों नहीं परमेश्वर ने भेजा, कहा एलिया तूने कठिन परिश्रम किया है, मैं और सब कुछ, ये सारी विभिन्न जगहें, मैं विश्वास करता हूँ, मैं बस मूसा को नीचे भेजूंगा। क्यों? मूसा की सेवकाई को देखें, एलिया सारे राष्ट्रों के लिए नबी था, परंतु मूसा व्यवस्था देने वाला केवल यहूदियों को, आमीन। वहाँ मूसा ये कहता है, कारण ये कि वो एलिया के साथ आता है, वे यहूदी कह रहे हैं, रुको, हम अब भी यहाँ व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, परंतु यहाँ मूसा स्वयं खड़ा है और यहाँ एलिया उसके साथ खड़ा है। ओ समझे, वो केवल यहूदियों के पास आता है, समझे। मूसा केवल यहूदियों के पास गया, एलिया नबी सारे राष्ट्रों के लिए था, मूसा केवल यहूदियों के लिए भविष्य दक्ता हुआ और व्यवस्था देने वाला, समझे, यही उसका संदेश था, व्यवस्था। परंतु एलिया का संदेश क्या था? बालकटी स्त्रियों को, नामधारियों को, जी हाँ श्रीमान, और उसने उनके वास्तव में धज्जियां उड़ा दी, रंगे पुते चेहरे, उन्हें बताया तुम कुत्तों के द्वारा खाए जाने वाले हो, उसने वास्तव में उनको तोड़ दिया। और तब जब आत्मा यूहन्ना पर उतरा, वो जंगल से चलता हुआ बाहर आया और वही चीज की, ठीक है, कहा तुम मत सोचो कि हम इससे या उससे जुड़े हैं, परमेश्वर योग्य है कि पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर ले। चलता हुआ सड़क पर आया, उसने कहा तेरा अर्थ मुझे बताने का ये है कि तूने अपने देवर से ब्याह कर लिया, कहा ये करना व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। ओ भाई, उसने उस स्त्री को बता दिया, निश्चय ही, ध्यान दें, इन प्राणों को थोड़ी और देर प्रतीक्षा करनी थी, 144,000 के लिए कि शहीद हों। ओ क्या ये नहीं जो बाइबल को एक साथ मिलाता है। अब मेरा समय ठीक पूरा हो गया है, यदि मैं जल्दी बाहर जाऊं, परंतु अभी मेरे पास थोड़ी और चीजें हैं कहने को, यदि आप रुक सकें तो। मैं जानता हूं कि गर्मी है और मुझे पसीना आ रहा है, परंतु सुनिए, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है, ये इतना अच्छा है कि ठीक मेरे हृदय में जल रहा है, मैं आशा करता हूं कि आप इसे भूले नहीं। देखिए, मैं ये उसकी उपस्थिति में बता दूं, उसके अनुग्रह से अधिक समय नहीं हुआ, उसने मुझे मेरे लोगों को भी देखने दिया श्वेत वस्त्रों में, आपको याद है, अधिक समय नहीं हुआ, आपको कहानी याद है, अन्य जाति की दुल्हन, अब आप वहाँ हैं, वे सब श्वेत वस्त्रों में थे, मैं जागा ही था, मैं एक सभा में था, ये लगभग एक वर्ष पहले या थोड़ा और पहले, मैं एक सुबह जागा और उठा और मैंने कहा प्रिय, अपनी पत्नी से, वो नहीं हिली, बालकों को लगभग उठाना था और उन्हें स्कूल ले जाना था, ठीक वही पुरानी जगह पर, मैं पलंग पर ऊपर सरक गया और आप जानते हैं झुका हुआ सा, आप जानते हैं कैसे बैठा होकर अपने सिर को सिरहाने पर टिका लिया, हमारे पास एक तरीके के पलंग है और इसलिए पीछे को झुक गया इस तरह से, और मैंने सोचा लड़के तू पहले ही 53 का हो गया है और यदि तू कुछ परमेश्वर के लिए कुछ करने जा रहा है तो अच्छा है करता जा, क्योंकि तू बहुत बूढ़ा होने वाला है कुछ समय के बाद, देखिए। और मैंने सोचा आप जानते हैं ये ठीक बात है, और अब मैंने सोचा लड़के तू जानता है मैं बहुत अधिक दूर नहीं हूँ, मुझे जल्दी ही जाना है, मैंने कहा मेरे पिता जितना जिए ये उससे ये एक वर्ष अधिक है, समझे, मैंने सोचा मुझे जल्द ही जाना है, मैंने ये देखा और यहाँ मैंने परमेश्वर के लिए अब तक कुछ नहीं किया, मैंने सोचा मैं सदा उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैंने सोचा मुझे जल्दी करना है और ये करूँ, यदि मैं करने जा रहा हूँ और नहीं जानता कि मैं इसे कैसे करने जा रहा हूँ, बस यही है, मैंने सोचा मनुष्य मैं आशा करता हूँ मैं जीता रहूंगा कि उसे आते देखूं, मैं प्रेत या आत्मा नहीं बनना चाहता था, देखिए मैं सदा से आत्मा से डरता था, और अब आप जानते हैं कि इस प्रकार का एक, मैंने सदा सोचा जैसे यदि मैं भाई नेविल से मिलना चाहूंगा और वो एक छोटा सा बादल इधर उधर घूम रहा है, आप जानते हैं, और मैं कहूंगा हेलो भाई नेविल, और वो कहेगा हेलो भाई ब्रैनम, किसी और इंद्रिय के द्वारा वो बात नहीं कर सकता, परंतु बस मुझे मालूम होगा कि ये भाई नेविल था, जी हाँ, और मैं उससे हाथ मिलाना चाहूंगा जैसे कि हमेशा करता हूँ, क्योंकि मैं बस इतना ही जानता हूँ कि मनुष्य है, देखिए मैं उससे हाथ मिलाना चाहूंगा, परंतु उसके पास हाथ नहीं है, वो तो कब्र में सड़ गया, समझे, मैंने सोचा ओ मैं आशा करता हूँ कि मुझे इस स्थिति से नहीं निकलना पड़ेगा, अब मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ, मैं मरने से डरा करता था, डरता नहीं कि मैं नष्ट हो जाऊंगा, परंतु मैं आत्मा नहीं होना चाहता था, मैं मनुष्य बना रहना चाहता था, मैं रैप्चर की प्रतीक्षा करना चाहता था, देखिए मैं इसी प्रकार बना रहना चाहता था, मैं आत्मा नहीं होना चाहता था कि इधर उधर घूमूं। मैं लेटे हुए ये सोच रहा था और अचानक से वहाँ कुछ घटित हुआ। अब आप जानते हैं और आप सब उन दर्शनों से परिचित हैं, और यदि ये एक दर्शन था तो मुझे ऐसा वाला कभी नहीं मिला था। देखिए, और मैं इनको अपने बालकपन से देख रहा था और एकदम अचानक से कुछ घटित हुआ और मैंने अपने आप को छोड़ते हुए अनुभव किया। मैंने सोचा ओ, और मैंने सोचा मैं पहले ही मर चुका हूँ और मैं चला गया हूँ, समझे। मैं एक स्थान पर पहुँचा और मैंने सोचा मैं विश्वास करता हूँ मैं पीछे मुड़कर देखूंगा। मित्रों, मैं वैसे ही वास्तविक था जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, समझे। और मैं घूमा कि पीछे देखूं और मैं वहाँ पर था, पलंग पर पड़ा हुआ था। मैं लंबा अपनी पत्नी के बगल में पड़ा था। मैंने सोचा भाई देखिए मैं अचानक से मर गया, जो कि जाने का एक अच्छा तरीका है। इसलिए मैंने सोचा ये हृदय घात है और मुझे दुख नहीं उठाना पड़ा। मैंने देखा और मैंने सोचा अच्छा अब ये तो अजीब है, मैं ठीक वहाँ पर पड़ा हूँ और यहाँ मैं खड़ा हूँ। इसलिए मैं घूमा, ऐसा लगा कि एक बड़ा, जैसे एक बहुत बड़ा मैदान जैसा है या कुछ, बस एक बड़ा फैला हुआ नीली घास का मैदान। और मैंने कहा भाई मैं आश्चर्य में हूँ कि ये क्या है। और अचानक से जैसे ही मैंने देखा वहाँ हजारों हजारों गुना युवा महिलाएं सारी श्वेत वस्त्रों में और बाल कमर तक लटके हुए नंगे पैर, और वो मेरी ओर भागती हुई आ रही थीं। मैंने सोचा अब ये क्या है। मैंने घूमकर पीछे की ओर देखा और वहाँ पर मैं था, और इधर की ओर देखा वहाँ वे आते हैं। मैंने अपनी उंगली काटी, मैं सोया हुआ नहीं था सही में, परंतु मैं अनुभव कर सकता था। और मैंने कहा अच्छा तो यहाँ कुछ विचित्र है। और ये सारी स्त्रियाँ भागती हुई आ रही थी, और मैंने कभी इतनी सुंदर स्त्रियाँ नहीं देखी, और वो सब मेरी ओर भागती हुई आ रही थी। और जब वे भागती हुई मेरे पास पहुँची, आप जानते हैं कि कैसे मैं एक प्रकार से हो गया। वे मुझे स्त्रियों से घृणा करने वाला कहते हैं, परंतु मैं नहीं हूँ। परंतु मैं बस सोचता हूँ एक अच्छी स्त्री उनमें से एक रत्न है, परंतु मैं सोचता हूँ वो जो अच्छी नहीं है, जैसा कि सुलेमान कहता है आपके खून में पानी है। इसलिए मैं निश्चित हूँ बदनाम स्त्री का कोई उपयोग नहीं या तेज का। और इसलिए ये स्त्रियां सब आती हैं और उन्होंने अपने हाथों को मेरे गले में डालने लगी। अब ये विचित्र है, आप जानते हैं कि मैं इसके लिए नहीं खड़ा होऊंगा, इसलिए वे थे। अब मुझे इस बात को इस प्रकार से कहना है, मैं मिली जुली भीड़ में हूँ, परंतु वे स्त्रियाँ थी और उन्होंने मुझे गले लगाया प्रत्येक ने, और कहा हमारा बहुमूल्य भाई। एक मुझे गले लगाएगी और फिर दूसरे मुझे गले लगाएगी। मैं वहाँ पर खड़े हुए देख रहा था, मैंने सोचा भाई ये सब क्या है, समझे। और वे वहाँ पर खड़ी हुई थीं। मैंने सोचा क्या हो गया। मैंने मुड़कर नीचे देखा, मैं वहाँ ठीक नीचे पड़ा हुआ था और यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने सोचा अब ये तो विचित्र बात है, मैं इसे नहीं समझता। और वे स्त्रियाँ चिल्लाई ओ हमारे मूल्यवान भाई, और मेरे गले लग रही थीं। अब वे हर प्रकार से महसूस करने में स्त्रियाँ थीं। बहनों, अब मुझे क्षमा करें जैसा कि मैं ये कहता हूँ, क्योंकि परंतु आप अपने डॉक्टर की सुनती हैं। यदि मेरे विचार शुद्ध नहीं हैं, तो फिर हम मसीह नहीं हैं। मैं चिंता नहीं करता, मैं सदा से साफ रहा हूँ, परमेश्वर ये जानता है। जब मैं एक छोटा लड़का था, स्वर्गदूत ने मुझसे कहा अपने शरीर को दूषित नहीं करना धूम्रपान या मदिरा से। ये सच था, परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने ये किया। जब मैं एक पापी था, मैं स्त्रियों के पीछे नहीं भागा। और इस प्रकार, परंतु कोई भी मनुष्य उसे स्त्री को उसकी बाहों में गले लगने दो, और वो नर कोशिकाओं से बना है और वो एक नारी, तो वहाँ संवेदना है। मैं चिंता नहीं करता कि आप कौन हैं। अब मुझसे न कहें कि मैं आपको नहीं, यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, परंतु वहाँ नहीं, क्योंकि आपके पास कोई और भिन्न कोशिकाएं नहीं। आप वहाँ पर कभी पाप नहीं करेंगे। वहाँ एक बदलाव था, वहाँ उन स्त्रियों के लिए भाइयों के प्रेम छोड़ और कुछ नहीं था। यद्यपि अनुग्रह में जो उन्होंने देखा, मैं सोचता हूँ एक महिला, एक अच्छी महिला जो अपने आप को सही बनाए रखती है और एक सभ्य महिला के समान चलती है, वो रत्न का एक नमूना इस पृथ्वी पर है। मैं कोई भी चीज पसंद करता हूँ जो अनुग्रह से भरा है। मैं सोचता हूँ एक महिला जो अपने स्थान पर बनी रहती है और एक सभ्य महिला होने का यत्न करती है, वो सम्मान की स्थिति है। मैं ये विश्वास करता हूँ, और मैं सोचता हूँ एक जो नहीं है, ये मसीह विरोधी के समान है, एक ही चीज। मैं किसी भी चीज को स्वाभाविक रूप में पसंद करता हूँ, जैसे सुंदर घोड़ा या कोई चीज, ये बस अपने विधान में खड़ा होता है, उस वास्तविक सुंदर घोड़े का या कोई चीज। इस प्रकार एक सुंदर पहाड़, सुंदर स्त्रियाँ, सुंदर पुरुष, कोई भी चीज परमेश्वर की बनावट में खड़ी है। मैं सदा इसकी सराहना करता हूँ, और ये सिद्ध थे। परंतु कोई मतलब नहीं, वे मुझे कितना भी गले लगाएं अपनी बाहों में, और वे स्त्रियाँ थीं। आप समझते हैं, परंतु वहाँ कभी कोई पाप नहीं हो सकता। पुरुष ग्रंथियाँ और स्त्री ग्रंथियाँ दोनों चली गई थीं। प्रभु का धन्यवाद, वे मेरी बहनें थीं पूरी रीति से। मैंने देखा और मैंने अपने हाथों को देखा, मैंने देखा वे इतने युवा थे और मैंने देखा मैं भी युवा था और मैं एक युवा के समान मेरे बाल उतर रहे थे। एक नाई ने उन पर कार्बोलिक एसिड डाल दिया था जब मैं बस एक लड़का था, सारे निकल गए। ये मेरे लिए सदा एक चीज रही और मुझे बहुत जल्दी जुखाम हो जाता है क्योंकि मेरे सिर की खाल अब भी मुलायम है। आप जानते हैं बालों की जड़ें अब भी वही हैं, परंतु वो कार्बोलिक एसिड से जल गई हैं और बाल कभी नहीं उग सकते। देखिए, और मैं गया मेरी पत्नी, जब मैं बहुत वर्षों पहले मेरे लिए बालों की टोपी पहनने के लिए लाई, बालों की टोपी कि मेरे सिर को ढांके, परंतु मुझे इसे पहनने में सदा लज्जा आती थी क्योंकि ये ऐसी लगती थी जैसे कुछ झूठ है और मैंने कुछ भी झूठा नहीं चाहा। और इसलिए मैंने सोचा मैं उन वाली टोपी को पहनूंगा। तब मैंने कुछ समय के लिए किया। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया, वे मुझे बिशप कहकर पुकारना चाहते थे। तब कहा, मैंने चाहा कि देखिए, मैंने बस कहा इसे जाने दो। इसलिए मैं बुरे जुखाम से परेशान रहा और होने दिया। परंतु अब आप उन खिड़कियों को उठा रहे हैं, कोई भी थोड़ी सी हवा सीधी आती है, लड़के मुझे ये हो जाता है। और मैं डॉक्टर के पास गया और उससे कहा, उसने क्या सोचा, उसने कहा भाई देखिए, आपके छिद्र खुले हुए हैं, आपको प्रचार करने से पसीना आता है, वो हवा आती है, ये स्राव में जुखाम के कीटाणु डाल देता है और ये आपके गले में उतर जाते हैं, अगली सुबह आपका गला खराब हो जाता है, यही है। और इस प्रकार ओ आप लोग जिनके पास बाल हैं, आप नहीं जानते कि आपको कितना धन्यवादित होना चाहिए कि आपके पास हैं। ये ठीक बात है, समझे। अच्छा, अब मैंने पाया कि मैं अब होने जा रहा हूँ इन्हीं किन्हीं दिनों में, यदि मैं अपने दांतों को नहीं लेता हूँ, मैं उनमें से कुछ को तो लेना ही है या फिर उनके बिना ही करना है। इसलिए यदि एक व्यक्ति भाई, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि किसी पुरुष के लिए ये होगा, यदि वो चाहता है तो कि बालों की टोपी पहने, बजाय एक स्त्री उन चूहों या चूहियों को पहनेगी जो कुछ भी वे अपने बालों में लगाती हैं, इस प्रकार से कि इसे बनाए, समझे। परंतु वो दिशा, यदि आप ये करते हैं, निर्भर करता है कि आप किस लिए करते हैं, समझे। ये निर्भर करता है कि किस लिए ये करते हैं। और इसलिए, परंतु ये जो भी है, वहाँ खड़े हुए मैंने अनुभव किया कि मेरे बाल फिर से आ गए हैं। ओ, मैं युवा था और ये सारे युवा, और मैंने सोचा भाई क्या ये आश्चर्यजनक नहीं, यहाँ वे हैं और वे सब भाग रहे थे। और मैंने आते हुए देखा और मैंने होप को आते देखा, उसने देखा, आप जानते हैं वो 22 वर्ष की आयु में मर गई थी, वो अब भी वैसे ही सुंदर थी जैसे कभी थी। आप में से बहुतों को उसकी याद है, वो बड़ी काली आंखें, वो जर्मनी थी, उसके काले बाल उसकी कमर पर लटके थे। और मैंने सोचा अब जब वो यहाँ पहुँची, वो कहेगी बिल, मैं जानता हूँ वो कहेगी बिल जब वो यहाँ पहुँची। मैं देख रहा था और वो ये सारी स्त्रियाँ आ रही थी और मेरे गले लग कर कह रही थी, ओ अमूल्य भाई, आपको देख कर हम बहुत आनंदित हैं। मैंने सोचा, सबने एक से वस्त्र पहने हुए थे परंतु उनके बाल अलग अलग थे, आप जानते हैं, लाल बाल, काले बाल और सुनहरे बाल, और वे आ रहे थे परंतु वे सब युवा थे। और जब वो मेरे पास पहुंची, मैंने सोचा देखने जा रहा हूं कि वो क्या कहती है, और उसने मेरी ओर देखा और उसने कहा, ओ हमारे मूल्यवान भाई, मुझे गले लगाया और बस वो आगे बढ़ गई। कोई और स्त्री आई अगली, उसने मुझे गले लगाया और मैंने एक शोर सुना और उधर की ओर देखा और यहाँ पुरुषों का एक झुंड आ रहा था, युवा लोग, सारे लगभग 20 वर्ष की आयु में, और उनके बाल काले थे और भूरे बाल, और वे सब श्वेत वस्त्र पहने हुए थे और नंगे पैर थे। वे मेरी ओर भागे और मुझे गले लगाने लगे, शोर मचा रहे थे, मूल्यवान भाई। मैंने सोचा और मैं पीछे वापस घूमा और वहाँ मैं था, अब भी वहीं पड़ा हुआ, और मैंने सोचा भाई ये विचित्र है। और तब एक आवाज मुझसे बातें करने लगी और मैंने आवाज को कभी नहीं देखा। इसने कहा, तुम जमा हुए हो, तुम अपने लोगों में जमा हो। और तब किसी मनुष्य ने मुझे उठाकर ऊपर बैठा दिया किसी बड़ी ऊंची चीज पर, इस प्रकार से। मैंने कहा, आपने ये क्यों किया? कहा, पृथ्वी पर आप एक अगुवा थे। और मैंने कहा, भाई मैं ये नहीं समझा। और वो आवाज मुझसे बातें कर रही थी और मैं उस आवाज को कभी देख ना सका। अब ये ठीक मेरे ऊपर थी, मुझसे बातें कर रही थी। मैंने कहा, अच्छा यदि मैं मर गया हूँ तो मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं वो ऐसा था, वो मेरा सारा जीवन है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और इसलिए उसने कहा, तुम इसे अभी नहीं देख सकते, वो अब भी ऊंचे पर है। देखिए, ये वेदी के नीचे था, अब भी देखिए, छठवां स्थान जहाँ लोग जाते हैं, देखिए, ना कि सातवां, जहाँ की परमेश्वर सातवें आयाम में है। ये छठवां, और वे सारे वहाँ थे और वे पास से होकर निकल रहे थे, और मैंने कहा ऐसा लगा कि वास्तव में वहाँ लाखों थे, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, और जब मैं वहाँ बैठा था ये स्त्रियाँ और पुरुष अब भी भाग कर मुझे गले लगा रहे थे, मुझे भाई कह रहे थे, और मैं वहाँ बैठा था, और तब उस आवाज ने कहा तुम अपने लोगों के बीच में हो जैसे याकूब अपने लोगों के बीच में। मैंने कहा ये सारे मेरे लोग, क्या ये सब ब्रणम है? उसने कहा नहीं, ये तुम्हारे मत परिवर्तक मसीह के लिए। मैंने चारों ओर देखा और वहाँ वास्तव में सुंदर स्त्रियाँ दौड़ रही थीं। वो लगभग एक सी दिखाई पड़ती थीं। उसने अपने हाथों को मेरे चारों ओर डाला और कहा ओ मेरे मूल्यवान भाई। उसने मेरी ओर देखा, मैंने सोचा ओ ये स्वर्गदूत जैसी दिखाई पड़ती है, और वो चली गई। और उस आवाज ने कहा क्या तुमने उसे नहीं पहचाना? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। कहा तुमने इसकी मसीह तक अगुवाई की जब वो 90 की हो चुकी थी। कहा आप देखिए वो क्यों आपके विषय में बहुत सोचती है। मैंने कहा ये सुंदर लड़की 90 पार कर गई थी। हाँ, कहा वो और कभी नहीं बदलेगी। कहा यही कारण है कि वो कह रही है मूल्यवान भाई। मैंने सोचा ओह प्रभु, मैं इस बात से डर गया था क्यों ये लोग वास्तविक हैं। वे कहीं नहीं जा रहे थे, वे थके हुए नहीं थे वहाँ होते हुए। और मैंने कहा भाई मैं यीशु को क्यों नहीं देख सकता? कहा अच्छा, अब वो किसी दिन आएगा और वो पहले आपके पास आएगा और फिर आपका न्याय होगा। कहा ये लोग आपके मत परिवर्तक हैं जिनकी अगुवाई तुमने की। और मैंने कहा आपका अर्थ एक अगवा होने के नाते जो कि मैं कि वो मेरा न्याय करेगा? कहा हाँ। और मैंने कहा क्या हर अगुवे का इसी प्रकार न्याय होगा? कहा हाँ। मैंने कहा पौलुस के विषय में क्या है? उसने कहा वो उसका अपने लोगों के साथ न्याय होगा। अच्छा, मैंने कहा यदि उसका झुंड अंदर जाता है वैसे ही मेरा जाएगा, क्योंकि मैंने ठीक वही वचन प्रचार किया है, यही है। मैंने कहा जहाँ उसने यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया मैंने भी दिया, मैंने प्रचार किया, और लाखों लोग एकदम से चिल्ला उठे हम इसी पर विश्राम कर रहे हैं। और मैंने सोचा ओ यदि मैं इस बात को पहले से जानता कि मैं यहाँ आता मैं लोगों को यहाँ लेकर आता, वे इसमें चूक नहीं सकते थे। क्यों? इधर देखिए। और फिर उसने कहा अब वो किसी दिन आएगा, और फिर अब यहाँ हम ना ही खाते पीते या सोते हैं, हम सब एक हैं। अच्छा, क्या ये सिद्ध नहीं है? ये सिद्धता से आगे है। ये क्या भव्य नहीं है? ये भव्यता से आगे है। वहाँ कोई नाम नहीं सकता, आप नहीं सोच सकते, शब्द कोश में कोई शब्द नहीं है इसे कहने के लिए। आप बस पहुँचे हैं, बस यही है। और मैंने सोचा अच्छा ये सिद्ध होगा, और फिर हम अगला क्या करने जा रहे हैं? कहा तब जब यीशु आता है और हम और वो आपका न्याय करता है या आपकी सेवकाई के लिए, तब हम वापस पृथ्वी पर जाते हैं और देहों को लेते हैं। भाई मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, ये ठीक वचन के अनुसार है। कहा तब हम वापस पृथ्वी पर जाते हैं और देहों को लेते हैं, तब हम खाते हैं, हम यहाँ नहीं खाते न ही हम सोते हैं। कहा हम वहाँ खाते हैं परंतु हम वापस पृथ्वी पर जाते हैं। मैंने सोचा ओ क्या ही ये आश्चर्यजनक नहीं? ओ और मैं बस इससे डरता था, क्यों मैं मरकर यहाँ आने से डरता था? भाई ये सिद्धता है और सिद्धता और सिद्धता। ओ ये शानदार है। देखिए हम ठीक वेदी के नीचे थे, समझे? ये यही था, देखिए ठीक वेदी के नीचे आगमन की प्रतीक्षा में। देखिए उसके लिए जाकर उन लोगों को जो उसमें सो रहे थे, वे देहें जो मिट्टी में सो रही हैं, कि हमें फिर उठाए आने के समय, हमें उठाए जैसा यीशु स्वर्गलोक से होकर आया और अब्राहम इसहाक और उन सबको ऊपर ले आया। आप जानते हैं जो पहले पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे थे वे नगर में गए और बहुतों पर प्रकट हुए। ये सिद्ध वचन से है, दर्शन ये था ये जो भी था ये सिद्ध वचन से था। और मैंने कहा अच्छा क्या ये शानदार नहीं? और तब मैंने सोचा क्या ये आश्चर्यजनक? मैंने सुना कोई चीज घोड़े के समान हिनहिनाई, और मैंने देखा मेरा छोटा काठी वाला घोड़ा जिस पर मैं सवारी किया करता था, छोटा प्रिंस, मैं उसको बहुत याद किया करता था। वो यहाँ पर था, वहाँ मेरे बराबर में खड़ा था और अपना मुंह मेरे कंधे पर रख रखा था मेरे गले लगने को, जैसे कि मैं उसे चीनी दिया करता था, आप जानते हैं। और उसने अपना रखा, मैंने अपनी बाह उसके चारों ओर डाली और मैंने कहा प्रिंस मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर होगे। मैंने महसूस किया किसी चीज ने मेरा हाथ चाटा, वहाँ वो मेरा पुराना कुत्ता कून था, जब श्री शॉर्ट ने उसे वहाँ जहर दे दिया था। मैंने शपथ खाई थी कि मैं श्री शॉर्ट को इसके लिए मार डालूंगा। मैं लगभग 16 वर्ष का था, उसने उसे जहर दिया, उसे कुत्ते वाली गोली दे दी, और मेरे पिता ने मुझे बंदूक के साथ पकड़ लिया था जब उसे गोली मारने जा रहा था ठीक पुलिस चौकी में, और मैंने कहा मैं इसे मार डालूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं कुत्ते की कब्र पे गया और मैंने उससे कहा, मैंने कहा फ्रिट्स तुम मेरे साथ साथ साथी के समान रहे हो। तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मुझे स्कूल भेजा। जब तू बूढ़ा होगा मैं तेरी चिंता करने जा रहा हूँ। अब उन्होंने तुझे मार डाला। मैंने कहा, फ्रिट्स, मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि वो जीवित नहीं रहेगा। मैंने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वो जीवित नहीं रहेगा। किसी दिन मैं उसे सड़क पर पकड़ लूंगा पैदल चलते हुए और उस पर गाड़ी चढ़ा दूंगा। देखिए, मैंने कहा तेरे लिए मैं उसे ले लूंगा। परंतु आप जानते हैं क्या, मैंने उस मनुष्य की मसीह तक अगुवाई की और यीशु के नाम में उसे बपतिस्मा दिया। मृत्यु होने पर उसे गाड़ा। जी हाँ श्रीमान, उसके लगभग 2 वर्षों बाद मैंने उसका मत परिवर्तन किया। तब मैंने चीजों को भिन्न रूप में देखा। देखिए, बजाय घृणा के मैंने उससे प्रेम किया। इसलिए तब, परंतु जो भी हो, वहाँ पर फ्रिट्स खड़ा हुआ था और मेरा हाथ चाट रहा था और मैं था, मैंने देखा, मैं रो नहीं सका। कोई भी नहीं रो सकता। ये सारा आनंद ही आनंद था। आप उदास नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ सब कुछ आनंदित था। आप मर नहीं सकते क्योंकि वहाँ सब जीवन था। समझे? समझे? बूढ़े नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ सब कुछ युवा था। और यही जो ये बस सिद्ध, मैंने सोचा, ओ ये क्या आश्चर्यजनक नहीं? और लाखों, ओ प्रभु, मैं ठीक घर पर था। देखिए, और तभी मैंने एक आवाज सुनी और ये जोर से बोली, कहा, वो सब जिसे तुमने कभी प्रेम किया, मेरी सेवा का प्रतिफल, मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। उसने कहा, वो सब जिससे तुमने प्रेम कभी किया और वो सब जिसने तुम्हें कभी प्रेम किया, परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। मैंने कहा, प्रभु की महिमा हो। मुझे विचित्र अनुभव हुआ। मैंने सोचा, मामला क्या है? मुझे अजीब सा लगा। मैंने घूम कर देखा और पलंग पर मेरी देह हिल रही थी। मैंने कहा, ओह, निश्चय ही मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे मत जाने दो। परंतु सुसमाचार प्रचार किया जाना था। बस सेकंड भर में मैं फिर से पलंग पर था। देखिए, इस प्रकार से ज्यादा अधिक नहीं, 2 महीने पहले की आप थे, आपने सुना पढ़ा है, व्यापारी लोगों की वॉइस में ये सारे संसार में गई। देखिए, और भाई नॉर्मन यहीं पर हैं। मैं समझता हूँ वो आज रात्रि यहीं कहीं हैं। उसने इसका अनुवाद करके और वहाँ पैम्फलेट में वहाँ भेजा। ये हर जगह गया और सेवकों ने इसमें लिखा, उनमें से बहुत सोने और कहा, एक यहाँ है, मैं इसे हर किसी को बताऊंगा। निस्संदेह वहाँ सैकड़ों थे। ये वाला चला, कहा, भाई ब्रनम, आपका दर्शन व्यापारी लोगों की वॉइस में, और मैं टॉमी हिक्स की सराहना करता हूँ, यद्यपि वो अब व्यापारी लोगों के साथ नहीं है। मैं नहीं जानता क्यों, परंतु वो नहीं है। परंतु उसने इसमें सीधे सीधे लिखा, जहाँ मैंने कहा, ठीक वहाँ त्रिएकता वाली पत्रिका में, उसने कहा, जहाँ पौलुस ने यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया और लोगों को आज्ञा दी कि वैसे ही करें, मैंने वैसे ही किया है। देखिए, उसने उसमें वैसे ही लिखा जैसे ये था। समझे? और इसलिए तब मैंने सोचा, ओ, इस सेवक ने इसमें लिखा, भाई ब्रणम, आपका दर्शन, जो कि ये दर्शन हो सकता है। कहा, अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये बदल जाना। यदि पौलुस, यदि मैं पहले स्वर्ग में उठाया गया और ये देखा, पौलुस के विषय में क्या है जो वहाँ सीधा तीसरे स्वर्ग में उठाया गया, वो क्या था? उसने कहा, वो इसके विषय में, यहाँ तक कि इस विषय में बात नहीं कर सकता। देखिए, यदि वो उठा लिया गया, यदि ये उठा लिया जाना था, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता, मैं आपको नहीं बता सकता। परंतु इस सेवक ने कहा, भाई ब्रणम, आपका दर्शन वचनानुसार प्रतीत होता है और ठीक है, जब तक आप वहाँ घोड़े के विषय में बात नहीं करते कि जो वहाँ पर था। कहा, एक घोड़ा स्वर्ग में? कहा, अब देखिए कि वो पुरोहितवाद मनुष्य, बुद्धि विचार, समझे? उसने कहा, स्वर्ग मनुष्यों के लिए बनाया गया है, न कि घोड़ों के लिए। भाई, मैं बैठ गया। बिली, मेरा पुत्र यहाँ पर है, वो पत्र पुराने आराधनालय के कार्यालय में रखा है, लगभग 3-4 महीने पहले। मैंने कहा, मेरे मूल्यवान भाई, मुझे आपकी बुद्धि पर आश्चर्य होता है, परंतु और आपकी वचन की जानकारी, मैंने ये नहीं कहा कि मैं स्वर्ग में था। मैंने कहा, ये एक स्थान स्वर्ग लोक के समान, क्योंकि मसीह अब भी ऊपर है। देखिए, परंतु मैंने कहा, यदि ये आपको संतुष्ट कर सकता है, आप प्रकाशित वाक्य 19 निकालें, और जब यीशु स्वर्गों के स्वर्ग से निकलकर आता है, वो एक सफेद घोड़े पर सवारी कर रहा है और सारे संत उसके साथ घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं। ठीक है? बिल्कुल सही। जी हाँ, अवश्य। और वहाँ उसी स्थान में वहाँ एक था जो उकाब के समान दिखाई पड़ा और एक बैल के समान दिखा और एक, ठीक है, मेरा जहाँ वे घोड़े जो आए और एलिया को ले लिया, बस ये दिखाने जाता है। अब देखिए, मनुष्य का विचार कुछ चुन लेना चाहता है, ये ठीक बात है। अब ध्यान दें, परंतु मैं बस सोच रहा था, जैसा ये मूल्यवान धर्मी भाई यहुन्ना, बस मैंने सोचा कि ये एक अच्छा स्थान होगा कि इसे मिलाऊं, बस इसके पहले कि बंद करूं। देखिए, यदि यहुन्ना ने वहाँ देखा और वे उसके भाई थे। देखिए उसके भाई जिन्हें थोड़ी देर और प्रतीक्षा करनी थी, तब देखिए प्रभु परमेश्वर ने मुझे अनुमति दी कि मैं अपने भाइयों को देखूं और संत लोगों जो उनके प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्यान दें, वे बलिदान की वेदी के नीचे नहीं थे, मेरे वाले नहीं थे, परंतु ये वाले शहीद हुए थे। समझे, मेरे वाले शहीदों की वेदी के नीचे नहीं थे। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने और मैं बंद कर दूंगा ईमानदारी से, बस लगभग 10 मिनट में, 10 बजे यदि मुझे इसे काटना पड़े और इसे कल समाप्त करूं। देखिए वे मेरे लोग नहीं, वे जो प्रभु ने मुझे दिखाए दुल्हन, वे शहीदों की वेदी के नीचे नहीं थे, नहीं शहीदों के बलिदान की वेदी, परंतु श्वेत वस्त्र प्राप्त किए जीवित वचन का, क्षमा का अनुग्रह स्वीकार करने के द्वारा मसीह ने उन्हें श्वेत वस्त्र दिया। मैं नहीं सोचता खुलने के द्वारा, या मैं ये सोचता हूँ, बल्कि इस पांचवी मोहर के खुलने के द्वारा, जैसा कि मैं विश्वास करता हूँ कि ये हम पर खुलती है। मैंने ये एक अच्छे विवेक से किया, परमेश्वर के सामने स्पष्ट प्रकाशन से, इसे बनाने का यत्न नहीं किया। सोचिए, क्योंकि मैं सदा संस्था के विरोध में रहा हूँ, इनसे कभी नहीं जुड़ूंगा, परंतु ये अब मेरे लिए खुला है। और मैं दूसरी बात सोचता हूँ, इस दिन में इस पांचवी मोहर के खुलने के द्वारा यहाँ इस शिक्षा को सीधा मजबूत करना, ताकि मैं सोते हुए प्राणों के लिए बोल सकूं। और मैं अनुभव करता हूँ कि यहाँ कुछ लोग हैं जो इसका विश्वास करते हैं कि प्राण सोते हैं। मैं सोचता हूँ ये इसका खंडन करता है। वे लोग सो नहीं रहे हैं, वे जीवित हैं, उनकी देहें सो रही हैं, परंतु प्राण कब्र में नहीं है, वे परमेश्वर की उपस्थिति में है। देखिए वेदी के नीचे, यहाँ जहाँ मैं मूल्यवान भाई एक शिक्षक से असहमत हूँ, मैंने ध्यान दिया, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ उसके कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, ये कि मैं अनुभव करता हूँ कि वो एक महान शिक्षक है, वो एक डॉक्टर है, दिव्यता का डॉक्टर, और एक PhD, और वो एक अच्छा वास्तविक व्यक्ति भी है। मैं समझता हूँ वो इस समय जा चुका है, परंतु वो एक अच्छा मनुष्य था और वो एक अच्छा लेखक, और ये भाई उरिया स्मिथ जो डैनियल एंड रेवलेशन का लेखक है। अब आप लोग जो उसकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं, देखिए, अब मैं बस नहीं इस बात को घमंड से नहीं कहता, परंतु मैं बस समझे, परंतु भाई स्मिथ और समर्थन करने की कोशिश करते हैं। देखिए वे प्राण सो रहे हैं, इस बात का समर्थन करने का यत्न कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने इसका उल्लेख किया, प्राण सोता है और स्वर्ग में बलिदान की कोई वेदी नहीं है, और एक ही वेदी के विषय में बोला है जो वो स्वर्ग में होने का विश्वास करते हैं, और वो है सुगंध की वेदी। परंतु आप प्रिय लोगों और अपने भाई से असहमत ना होते हुए, मैं सभ्य उससे दूसरी ओर मिलने की आशा करता हूँ। देखिए उस बड़े शिक्षक से असहमत ना होते हुए, परंतु आपको ये दर्शाने के लिए कि कैसे ये इसका खंडन करता है। देखिए ये इसका खंडन करता है, इस अंत के दिन में इस मोहर का खुलना, ये इन प्राणों के सोने को सीधा सीधा हटा देता है। समझे, वे लोग जीवित हैं, वे लोग मरे हुए नहीं हैं। समझे, ध्यान दें, अब इस पर ध्यान दें। अब यदि स्वर्ग में बलिदान की वेदी नहीं है, तो फिर पाप के लिए बलिदान कहाँ पर रखा है? वो मेमना। वहाँ एक स्थान होना चाहिए कि बलिदान किया हुआ मेमना, लहू लुहान वहाँ पर रखा है, जहाँ की लहू ये। अब सुगंध वो गंध थी, गंध की चीजों जो उन्होंने जलाई, जिसे कि बाइबल कहती है कि वो संतों की प्रार्थनाएं थी। यदि वहाँ वेदी पर कोई बलिदान नहीं है, तो फिर प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की जा सकती। ये केवल लहू के द्वारा है, बलिदान की वेदी पर जो प्रार्थनाओं को होकर परमेश्वर के पास जाने देता है। भाई स्मिथ गलत थे, देखिए उनके साथ असहमत नहीं, मैं सोचता हूँ मैंने अपने आप को स्पष्ट कर दिया है, उस भाईचारे के प्रेम और सम्मान के साथ उसके बड़े कार्य के लिए। देखिए, परंतु वो गलत था, पांचवी मोहर ने ये खोल दिया है। देखिए बहुत सी और बातें हैं, यदि आप इसे पकड़ लें। समझे, मैं अपने प्रश्नों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, देखिए यदि मैं ठीक है। अब वाचा का संदूक कहाँ था? मारा हुआ, घायल, लहूलुहान मेमना छुटकारे के लिए, इन प्रार्थनाओं की गंध के लिए। ध्यान दें, बाइबल कहती है यदि ये पृथ्वी का डेरा हमारा रहने वाला गिराया गया, हमारे पास एक है जो पहले से प्रतीक्षा कर रहा है। यही जहां मैंने उन संतों को देखा, समझे? ध्यान दें, जब बालक, बहने मुझे फिर से क्षमा करें इन स्पष्ट बातों के लिए युवा स्त्रियों के सामने, परंतु देखिए, जब एक माँ गर्भवती होती है और वे छोटी छोटी मांसपेशियों का झुंड फड़कता और कूदता है, आप समझते हैं, ये एक स्वाभाविक देह है, और जैसे प्राकृतिक स्वाभाविक देह में करती है। क्या आपने कभी अपनी पत्नी पर ध्यान दिया, इसके पहले कि वो छोटा बालक जन्मा, वो सदा सीधे सीधे अंत में वास्तव में नम्र हो जाती है। यदि वो अपने सारे जीवन में ना रही हो, वो तब हो जाएगी। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कितनी संतों जैसी या इस प्रकार की अनुभूति आपने ध्यान दिया कि माँ, और आप देखते हैं कि कुछ पापी वहाँ माँ का उपहास उड़ाते हैं जो एक गर्भवती स्त्री, मैं सोचता हूँ ये बेतुका है, ये तो एक जीवन संसार में आ रहा है। परंतु क्या आपने ध्यान दिया कि माँ के चारों ओर एक मीठी अनुभूति प्रतीत होती है? ये क्या है? ये एक छोटी आत्मिक देह, आत्मिक जीवन आने की प्रतीक्षा कर रहा है उस छोटी देह में, जैसे ही वो जन्म ले। अब ये केवल उत्पन्न है, परंतु जब ये जन्म लेती है, आत्मिक देह स्वाभाविक देह के साथ मिल जाती है। और फिर बाइबल सिखाती है कि हम अब परमेश्वर से उत्पन्न हैं, हम पवित्र आत्मा से उत्पन्न हैं, ये हम में मसीह है, एक परमेश्वर का पुत्र हम में रूप धारण कर रहा है। और जब ये पृथ्वी की देह मरती है, ये आत्मिक देह पृथ्वी के बर्तन से निकलती है, वहाँ एक और देह इसे लेने की प्रतीक्षा कर रही है। यदि ये पृथ्वी का डेरा गिर गया, वहाँ एक और देह इसे लेने के लिए है। ये मरणहार देह अमरता को पहन लेती है, या पार्थिविक स्वर्गीय को पहन लेती है। इसे देखिए, मेरा क्या अर्थ है, एक स्वाभाविक देह है जो कि पाप में है, परंतु ये अपनी बनावट में जैसी ये है, एक और देह है जिसमें हम जाते हैं। और मैं परमेश्वर का बहुत ही आभारी हूँ कि मैं आपके पास्टर भाई के समान ये कह सकता हूँ, मैंने उन लोगों को देख लिया है कि मेरी उस देह में सहायता हुई और उन लोगों को अपने हाथों से छुआ। ये ठीक बात है। ध्यान दें, देखें मूसा, एलिया को देखें। मूसा के मर जाने के बाद और एलिया स्वर्ग पर उठा लिया गया था, ये यहाँ रूपांतरण वाले पर्वत पर अपने बोलने, सुनने, समझने वाली इंद्रियों के साथ खड़ा हुआ और यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उससे बातें की। अब उसके पास किस प्रकार की देह थी? सैमुएल को देखें, उसके मर जाने के लगभग 2 वर्ष बाद उस गुफा में उस रात्रि वापस बुलाया गया उस इंदौर की जादूगरनी के द्वारा, और शाउल से भाषा में बातें की। शाउल ने सुनकर जवाब दिया और उन बातों को पहले से जाना जो घटित होने वाली थी। उसकी आत्मा अब भी नहीं बदली, वो एक भविष्यद्वक्ता था। जब एलिया की आत्मा मनुष्य पर आती है, ये उसको एलिया के समान चलाती है। वो जंगल में चला जाएगा, वो जंगल से प्रेम करेगा, वो अश्लील स्त्रियों से घृणा करेगा, वो संस्था के विरोध में होगा, वो किसी पर छींटाकशी नहीं करेगा, और ये बस, ये यही इसकी आत्मा होगी। ये था जब वो हर बार आता है। देखिए, मूसा वैसे ही व्यक्ति होगा अब, और हम प्रकाशित वाक्य 22:8 में पाते हैं वही चीज। अब इस बात को उन लोगों के लिए तय करना जो वे प्राण, अब इस पर ध्यान दें, वेदी के नीचे इस मोहर के टूटने पर जो लोग मसीह की मृत्यु और कलीसिया के ऊपर उठा लिए जाने के बीच घात किए गए, आइकमैन का झुंड और वे सारे सच्चे यहूदी उस पुस्तक में अपने नामों के साथ। मेरे भाई, यदि आप ध्यान देंगे, वचन के अनुसार वे बात कर सकते थे, चिल्ला सकते, बोल, सुन, और उनके पास पांचों इंद्रियां थी, न कि कब्र में सो रहे थे अब चेतन होकर। वे बिल्कुल जागृत थे और बात बोल सुन सकते थे, कोई भी चीज। ये ठीक बात है? ओह, हमारी सहायता करें। दो मिनट। आमीन। मुझे खेद है कि मैं आपको आधे घंटे से रोके हूँ। नहीं, मैं इसे नहीं कह सक रहा था। देखिए, देखा, ये ठीक बात है। देखिए, परंतु देखिए, ये मेरी सबसे अच्छी समझ से, सब अच्छी और प्रकाशन के अनुसार जो मुझे इस प्रातः दिया गया, पौ फटने के जरा से पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वहाँ पांचवी मोहर खुली कि दूसरी चार के साथ जाए। उसके अनुग्रह के द्वारा उसने ये मुझे दिया, उसका अनुग्रह आप पर और मुझ पर। इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं और उसकी सहायता से मैं उसके समीप जीने की इच्छा रखता हूँ, जितना मैं रह सकता हूँ। दूसरों को यही बात सिखा रहा हूँ जब तक कि हम उससे ना मिले, आपके साथ महिमा में। जब सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, इस बात के लिए मैं उससे प्रेम करता हूँ, और ये मेरी सबसे अच्छी समझ से। और मैं सच में विश्वास करता हूँ अपने पूरे हृदय से कि सच्चे प्रकाशन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मोहर का प्रकट होना अब हम पर खुल गया है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया। कालवरी के वृक्ष पर अब शांत श्रद्धा के साथ परमेश्वर के सामने, जैसा कि हमने देख लिया, ये मोहर हमारे लिए खुल गई है। परमेश्वर ने अपनी ही प्रिय बालकों को लेकर और उनकी आंखें अंधी कर दी और उन्हें भेज दिया, क्योंकि उसका अपना न्याय, न्याय पाप पर न्याय की मांग करता है। इस पर सोचिए, उसका न्याय और उसकी पवित्रता न्याय की मांग करती है। एक कानून बिना दंड के कानून नहीं है, और उसके अपने ही कानून स्वयं ही वो नहीं तोड़ सकता, और फिर भी परमेश्वर बना रहे। यही कारण था कि परमेश्वर मनुष्य बन गया। वो बदले में नहीं ले सका एक पुत्र जो कि नहीं था, बस उसके लिए एक साधारण पुत्र या कुछ। परमेश्वर दोनों हो गया, यीशु पुत्र और परमेश्वर दोनों हो गया। केवल एक ही मार्ग था कि वो इसे करने के लिए धर्मी हो सकता था। परमेश्वर को ही अपने ऊपर दंड लेना था, नहीं तो वो न्याय नहीं होगा कि किसी और के ऊपर डाल दे, दूसरे व्यक्ति पर। इसलिए यीशु का व्यक्तित्व परमेश्वर था, देह में प्रकट हुआ, इमैनुएल कहलाया। और ये करने के लिए, एक दुल्हन लेने के लिए और खोए हुए मूर्ति पूजक के झुंड को बचाने के लिए अन्य जाति, उसे अपने ही बालकों को अंधा करना पड़ा, और इसके लिए उन्हें धक्का दिया देह में अस्वीकार करने के लिए। परंतु उसके अनुग्रह ने वस्त्र दे दिए, परंतु जीवन, देखिए क्या घटित हुआ। और यदि उसे ये करना पड़ा ताकि हमें एक अवसर मिले, हम कैसे इस प्रेम में इस अवसर को ठुकरा सकते हैं? यदि इस भवन में कोई आज रात्रि वो व्यक्ति, युवा या बूढ़ा, जिसने इस समय इस अवसर को ठुकरा दिया, जिसका भुगतान परमेश्वर एक ऐसा दाम, और आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहेंगे जो परमेश्वर ने आज रात्रि दिया है, और आपको नहीं होना है, जहाँ तक कि कभी भी हम जानते हैं कि आप एक शहीद हो, यद्यपि आप हो सकते थे, परंतु एक श्वेत वस्त्र आपको दिया गया। यदि परमेश्वर अब आपके हृदय पर खटखटाता है, तो क्यों नहीं इसे स्वीकार करते? अब आइए फिर से सिरों को झुकाते हैं। यदि वो व्यक्ति या लोग जो यहाँ हैं इच्छा करते हैं कि, या उसे अपने विश्वास के आधार पर स्वीकार करते हैं उस बहाए हुए लहू में जिसे परमेश्वर ने आपके लिए बहाया, किसी भी चीज से ऊपर दुख उठाया जो कोई और मरणहार उठाए, कोई भी मरणहार इस प्रकार का दुख नहीं उठा सकता, यहाँ तक कि उसके अपने दुख ने उसकी शिराओं में उसके लहू से पानी को अलग कर दिया। इसके पहले वो कलवरी पर गया, लहू की बूंदें उसकी देह में से आ रही थी। इस प्रकार के दुख के साथ और टूटे हुए हृदय से यही जो उसे करना था, परंतु इसे मना भी कर सकता था, परंतु स्वेच्छा से आपके और मेरे लिए किया। क्या आप इस अतुल्य प्रेम को ठुकरा सकते हैं? और अब आप देखते हैं इन मोहरों के खुलने के द्वारा वो जो आपने किया और जो परमेश्वर ने आपके लिए किया और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करने को तैयार हैं। और यदि आप वो आपको मसीह विरोधी के हाथ से छीन लेगा जिसके हाथों में अब आप हैं, क्या आप उसके प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? उसकी ओर हाथ उठाने के द्वारा कहते हुए, परमेश्वर इसके द्वारा मैं प्रकट करता हूँ कि मैं उस अनुग्रह के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। और भाई बरनम, मैं आपकी प्रार्थनाओं की इच्छा करता हूँ कि मैं सदा निष्ठावान बना रहूँगा। अपने हाथों को उठाएं और मैं प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब इसका अर्थ है, जब तक कि इसका आपके लिए अर्थ ना हो ये ना करें, और ठीक जहाँ आप बैठे हुए हैं ठीक वहीं स्वीकार कर लें। क्योंकि याद रखें, आप अपना हाथ नहीं उठा सकते हैं जब तक कि कोई चीज आपसे ये करने को ना कहे, और ये कोई और नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। इसलिए अब जब आप देखते हैं कि वचन इतनी सिद्धता से खुल गया है, आप देखते हैं कि ये क्या हो रहा है इन युगों में होते हुए। पिछले कुछ 20 या 30 वर्षों में आप इसे सिद्ध प्रकट होता हुआ देखते हैं। आप देखते हैं वचन ठीक वही बता रहा है जो घटित हुआ और क्या घटित होने को तय है। तब विश्वास के आधार पर मसीह के अंदर कार्यों में, जहाँ ठीक इस समय आप बैठे हैं और कहते हुए अपने हाथों को उठाया है कि इस मिनट के बाद से ये तय हो गया, अब मैं मसीह को अपना बचाने वाला करके लेता हूँ और मैं उसके लिए अपने बाकी जीवन को जीऊंगा। और मेरी इच्छा है परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। यदि आपका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से नहीं हुआ है तो तालाब आपकी प्रतीक्षा में है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, लोगों के बीच बहुत अधिक गिनती में हाथ खड़े हुए हैं और मैं निश्चित हूं कि आप वही प्रभु यीशु हैं जिसने हमारा छुटकारा किया है बहुत वर्षों पहले और उन मोहरों के प्रकट होने के द्वारा। और वो महान बात जो घटित हुई ठीक यहाँ पर इन पिछले कुछ वर्षों में, मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ कि अनुग्रह का द्वार बंद होना आरंभ हो गया है और आप अपनी यात्रा के लिए तैयार हैं उन छुड़ाऊओं की, आपके लोग। जबकि वहाँ जगह है और एक द्वार खुला हुआ है जैसा कि नूह के दिनों में था, होने पाए ये अमूल्य प्राण जो इस आराधनालय की देह में जीवित हैं, जो कि किसी दिन समाप्त होने जा रही है, जिसने अपने मरणहार हाथ को उठाया है, उनके अंदर उनके दृढ़ विश्वास और उनके स्वीकरण के कारण कि वे विश्वास करते हैं और स्वीकार करना चाहते हैं आपका प्रस्ताव उनके उद्धार के लिए, इस खुली हुई मोहर बंद पुस्तक पर जो हमारे लिए खोली गई। आज रात्रि प्रभु उन्हें यीशु मसीह की धार्मिकता का वस्त्र दे दे और उनके प्राणों को पहना दे, ताकि वे आपके सामने उस दिन खड़े हो सकें जो कि बहुत ही समीप है, मसीह के लहू के द्वारा सिद्ध कर दे। प्रभु परमेश्वर, यदि इनका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में नहीं हुआ है और उस प्रकाशन पर जो आपने मुझे दिया इस विषय पर, और ये देखते हुए कि पौलुस ने लोगों को आज्ञा दी जिनका बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा हुआ था, उनका फिर से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए ताकि पवित्र आत्मा पाएं, प्रेरित 19 में, मैं मांगता हूं कि प्रभु आप उनको समझा देंगे सच्चाई का प्रभु, और होने पाए वे आपका आज्ञा पालन करें और अपने स्वीकरण के आज्ञा पालन में और अपने मत परिवर्तन के आज्ञा पालन में और जल के होने पाए बदले में आप उन्हें पवित्र आत्मा से भर दें सामर्थ और सेवा के लिए अपने बाकी जीवन में। अब मैं उन्हें आपको परमेश्वर के बलिदान किए मेमने यीशु मसीह के नाम में समर्पित करता हूँ। आमीन। आमीन। मैं उसे प्रेम करता हूँ, मैं उसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीद लिया उस कैलवरी के वृक्ष पर। अब आप जिन्होंने अपने हाथ उठाए, आत्मा की आज्ञा का पालन किया जो कि वचन के विधान का पालन करेगी उस प्राश्चित किए पापी के लिए, हर व्यवहार में इसका अनुकरण और स्वर्ग का परमेश्वर आपके उस पक्ष के लिए जो उसके लिए है पुरस्कार देगा। प्रभु आपको आशीष दे। कल आने वाली रात्रि में अपनी पेंसिल और कागज लाएं। अब जैसा कि आप लोग, हम उसी समय में यहाँ होने की आशा करते हैं, ठीक 7:30 बजे। प्रभु ने चाहा तो, और मेरे लिए प्रार्थना करें कि कल आने वालों में परमेश्वर मुझ पर 6वीं मोहर प्रकाशित करेगा, जैसा कि मैं लाने योग्य हूँ आपके लिए, जैसा वो मुझे देता है। तब तक के लिए हम इसे फिर से गाएं, केवल भजन के द्वारा होते हुए नहीं, परंतु इसकी प्रशंसा में होते हुए, जो कि हमारे बदले में मरा और हमें छुड़ाया। मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैं अब यहाँ आपका पास्टर है। उसे प्रेम करता हूँ, मैं उसे प्रेम करता हूँ, क्यों